आगे सबक देखिए भाई। वमन अकर बि वलदिन सुम्मा नफाहु फइन्नहु युलाइनु लिअन्न النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن وإن نفاه ثم أقر به حد لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب والأصل فيه حد القذف। भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर मैयत पर जिना की तोहमत लगाई और वो मकजूफ मोहसन था तो उसका काफिर बेटा या गुलाम बेटा जो है वो भी हद का मुतालबा कर सकता है, अगरचे वो बेटा खुद मोहसन नहीं है, वो गुलाम है या वो काफिर है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद जो कि मोहसन था उनकी हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि नहीं, ये बेटा खुद मोहसन नहीं है, अगर खुद इस पर कोई जिना की तोहमत लगाता तो इस सूरत में उस पर हद कजफ साबित नहीं होनी थी। तो जैसे ये अपने ऊपर इल्जाम की सूरत में हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता, इसी तरह अपने वालिद के लिए भी ये हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता। वो फरमाते हैं कि ये असल में तोहमत लगी है मैयत पर और आर भी लाहिक हुआ है मैयत को, तो सूरतन भी मैयत पर तोहमत है और मानन भी मैयत पर तोहमत है। सूरतन तोहमत होने का क्या माना, यानी मैयत को जिक्र किया उसने जिना के इल्जाम में, तो सूरतन भी मैयत पर इल्जाम और मानन भी इल्जाम मैयत पर है, मैयत पर तोहमत है, इसलिए क्योंकि मैयत को आर लाहिक हुआ है। तो सूरतन भी मैयत पर इल्जाम और मानन भी मैयत पर इल्जाम, और बेटे को सिर्फ आर लाहिक हुआ है, गोया बेटे पर सिर्फ मानन इल्जाम है सूरतन नहीं। तो ये मानन इल्जाम भी उसी तरह हो गया जैसे बेटे पर सूरतन और मानन दोनों एतबार से इल्जाम हो, जैसे कोई बेटे को बराह रास्त उस पर जिना का इल्जाम लगाए और बेटा तो काफिर या गुलाम है, वो तो मोहसन नहीं, तो उस पर कोई इल्जाम लगा दे, सूरतन भी इल्जाम हो और मानन भी इल्जाम हो, तो वो हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता। तो सिर्फ मानन जब उस बेटे पर इल्जाम है फिर वो बतरीके औला हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता। तो हमने बतलाया था कि हद कजफ के अंदर शर्त है कि जिस शख्स पर जिना का इल्जाम लगाया गया हो वह मोहसन होना चाहिए ताकि यह कामिल दर्जे का आर दिलाना हो, यह बात उसके लिए कामिल दर्जे की आर का सबब बने, क्योंकि इसकी वजह से हद जैसी बड़ी सजा आ रही है, तो लिहाजा आर भी कामिल दर्जे का होना चाहिए। और आर कामिल दर्जे का तब ही होगा कि जिस शख्स पर इल्जाम लगाया गया हो वह मोहसन हो, और वह मैयत तो मोहसन थी, लिहाजा उस पर जब इल्जाम लगाया गया जिना का तो वह कामिल दर्जे का आर हुआ, और फिर यही मैयत वाला आर लौट कर बेटे की तरफ आ गया, तो बेटे के लिए भी जो आर हुआ वो कामिल दर्जे का हुआ, लिहाजा इसलिए बेटा जो है मैयत की हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। जबकि इमाम जुफर ने इसको कियास किया था बेटे के ऊपर इल्जाम लगाने पर, हम कहते हैं नहीं, आप बेटे पर इल्जाम लगाने के उसके कियास नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मुख्तलिफ हैं। मैयत पर जो इल्जाम लगा था वो कामिल दर्जे का आर दिलाने वाला था और बेटा तो गैर मोहसन है, लिहाजा उस पर जो इल्जाम लगाया जाए वो कामिल दर्जे का आर नहीं, लिहाजा इसलिए आप उस मैयत के कजफ को बेटे के कजफ पर कियास नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया था कि अगर आका जो है अपने गुलाम से कहे ऐ जानिया के बेटे, या बाप जो है अपने बेटे से कहे ऐ जानिया के बेटे, तो ये गुलाम जो है आका पर हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता, और इसी तरह ये बेटा जो है बाप पर हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता क्योंकि आका को गुलाम की वजह से सजा नहीं दी जा सकती। वजह यह है क्योंकि गुलाम का जो हक होता है वो हकीकत में आका ही का हक होता है, तो गुलाम की वजह से आका को सजा देना बिल्कुल इसी तरह है जैसे आका के हक की वजह से आका ही को सजा दी जाए भाई। और इसी तरह बेटा जो है बाप से हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वजह से वालिद को तकलीफ होगी भाई। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फला तकुल लहुमा उफ्यू वला तनहरहुमा, तो जब बाप को उफ कहने से भी मना किया गया है तो हद कजफ के जरिए तो इंतहा दर्जे की तकलीफ होगी, तो वो तो बतरीके औला ममनू होगा भाई। और नीज हदीस में भी आता है कि औलाद की वजह से वालिद से किसास नहीं लिया जा सकता और गुलाम की वजह से आका से किसास नहीं लिया जा सकता। तो मालूम हुआ गुलाम की वजह से आका को सजा नहीं दी जा सकती और बेटे की वजह से बाप को सजा नहीं दी जा सकती। हां अगर इसी औरत का कोई और बेटा पहले खावन से भी हुआ, वो जो औरत थी जिसका इंतकाल हो चुका है, अगर उसका किसी और खावन से कोई बेटा हुआ तो फिर वो बाप से हद कजफ का मुतालबा कर सकता है, इसलिए क्योंकि यहां पर ये शख्स इसका बाप नहीं है। जब बाप नहीं है तो मानिया खत्म हुआ, तो ये हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। और फिर साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया कि अगर जिस शख्स पर हद कजफ लगाई जाए अगर वो मकजूफ मर जाए तो हद कजफ साकित हो जाती है, हद कजफ में वरासत जारी नहीं होती। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक हद कजफ में भी वरासत जारी होती है, लिहाजा उनके नजदीक मकजूफ के मर जाने से हद कजफ साकित नहीं होती। और फिर साहिब हिदाया ने बताया था कि हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इस बात में इत्तेफाक है कि यह जो हद कजफ है इसके अंदर हकुल अब्द भी है और इसके अंदर हकुल्लाह भी है। हकुल अब्द इस तरह है कि इस हद कजफ की वजह से खास आदमी को फायदा पहुंच रहा है कि उससे आर दूर हो रहा है। और मैंने आपको बतलाया था जब किसी एक चीज की वजह से खास आदमी को फायदा पहुंचे तो मालूम हुआ यह उस आदमी का हक है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम लोगों को भी फायदा पहुंचता है, हद की वजह से और लोग भी इस जुर्म से बाज आ जाते हैं, तो बाई एतबार देखें तो यह हकुल्ला है। हकुल्ला ऐसा होता है जिसमें आम लोगों को फायदा पहुंचता है। तो मालूम हुआ इस हद कजह में हकुल्लाह भी है और हकुल अब्द भी है। और साहिब हिदाया ने बतलाया कि बहुत से अहकाम हैं जिनसे पता चलता है यह हकुल अब्द है और बहुत से अहकाम हैं जिनसे पता चलता है यह हकुल्लाह है। बाज वो अहकाम जिनसे पता चलता है कि यह हकुल अब्द है, मसलन एक तो यह कि जमाना ज्यादा गुजर जाए फिर भी हद कजफ साकित नहीं होती, मालूम हुआ यह हकुल अब्द है। अगर हकुल्लाह होता तो जमाना ज्यादा गुजरने से इसने साकित हो जाना था। और नीज हकुल अब्द होने की एक अलामत यह है हदुल कजफ के अंदर एक दफा जब इकरार कर ले तो फिर रुजू जायज नहीं है, इससे भी पता चलता है कि यह हकुल अब्द है। हकुल्लाह के अंदर तो रुजू जायज होता है भाई। और नीज इसी तरह इसके अंदर दावा भी शर्त है हदुल कजफ के अंदर, इससे भी पता चलता है कि यह हकुल अब्द है। जबकि इसी तरह बाज अहकाम से पता चलता है कि यह हकुल्लाह है, मसलन एक तो यह कि इसके अंदर मकजूफ अगर माफ करना चाहे तो माफ नहीं कर सकता। जब एक दफा काजी के पास बात पहुंच गई, गवाही पेश हो गई, अब मकजूफ माफ करना चाहता है तो वह माफ नहीं कर सकता, मालूम हुआ यह इस बंदे का हक नहीं है। अगर इसका हक होता फिर तो इसका माफ करना सही होता भाई, लेकिन इसका माफ करना सही नहीं, यह बतला रहा है कि यह हकुल्लाह है भाई। और नीस एक और हुक्म जिससे पता चलता है कि यह हकुल्लाह है यह कि इसके अंदर जो काजिफ है उससे कसम नहीं ली जाती। मकजूफ अगर दो गवाह पेश कर दे फिर तो काजिफ पर हद कजफ साबित हो जाएगी, लेकिन अगर मकजूफ दो गवाह पेश न कर सका तो काजिफ पर इल्जाम लगाने वाले पर कसम नहीं आएगी। और यह अलामत है कि यह हकुल अब्द नहीं है, अगर यह हकुल अब्द होता तो इसके अंदर मुनकिर पर कसम आती भाई। और नीस इसी तरह गुलामी की वजह से यह हद कजफ निसफ हो जाती है, मालूम हुआ यह हकुल्लाह है, हकुल अब्द नहीं, अगर हकुल अब्द होता तो आधा ना होता भाई। बात समझ में आ गई? तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इस हद कजफ के अंदर दोनों जिहतें हैं, हक शरा होने की जिहत भी है और हकुल अब्द होने की जिहत भी है, इसमें हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इत्तेफाक है। अलबत्ता फिर इसके बाद गालिब कौन सा हक है, हकुल अब्द है या हकुल्लाह है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह जो है वो इस बात की तरफ गए हैं कि हकुल अब्द जो है वो गालिब है, हकुल अब्द गालिब है, उन्होंने हकुल अब्द को गालिब करार दिया है इस एतबार से कि बंदा मोहताज है और अल्लाह तो किसी चीज के मोहताज नहीं, अल्लाह तो हर चीज से बेनियाज है भाई। तो उन्होंने इसको बंदे का हक करार दिया है। जबकि हमारे नजदीक इसके अंदर गालिब जो है वह हक शरा है। वजह यह कि जब इसको हक शरा करार दिया जाएगा तो इसमें बंदे के हक की भी रियायत हो गई, क्योंकि अल्लाह तो सबके हकूक की हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो जब अल्लाह का हक गालिब करार दे दिया तो भी बंदे के हक की हिफाजत हो गई। लेकिन अगर इसका बरअक्स हो, यानी बंदे के हक को गालिब करार दिया जाए, तो फिर अल्लाह के हक को तो सिरे से ही बातिल करार देना पड़ेगा। वजह यह कि अल्लाह का हक जो उसूल किया जाता है वो सिर्फ नायब होने के एतबार से वसूल किया जाता है। अल्लाह का हक जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन या जो इमाम है मुसलमानों का वो वसूल करता है, और वो अल्लाह का नायब होकर ये हक वसूल करता है। तो वो खुद वसूल करता है या जिनको वो मुकर्रर करता है, जो उसके काजी या गवर्नर वगैरह होते हैं, वो उस खलीफा के नायब होकर वो इस हक को वसूल करते हैं। मालूम हुआ अल्लाह का हक वसूल करना हर एक का काम नहीं है, बल्कि सिर्फ बतौर नायब के वसूल किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन का काम है। तो आम लोग जो हैं वो तो अल्लाह के नायब नहीं, वो तो अल्लाह का हक वसूल नहीं कर सकते। तो देखो इस सूरत में अगर बंदे के हक को गालिब करार दे दिया जाए तो अल्लाह के हक को बातिल करार देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बंदे तो अल्लाह के नायब नहीं है कि वह अल्लाह का हक वसूल करें भाई। तो लिहाजा इसके अंदर हकुल्लाह को गालिब करार दिया जाए तो बंदे के हक की भी रियायत हो जाती है, और हकुल अब्द को गालिब करार दिया जाए तो अल्लाह के हक को बातिल करार देना लाजिम आता है। लिहाजा उस सूरत को इख्तियार किया जाएगा जिसमें दोनों की रियायत हो जाए, और वह इसी सूरत में है कि अल्लाह के हक को गालिब करार दिया जाए। इस पर यहां इश्काल होता है कि ए अहनाफ, अजीब बात है, यहां पर इमाम शाफिर हमला ने बंदे के हक को गालिब करार दिया तो आपने अल्लाह के हक को गालिब करार दे दिया, हालांकि कई मकामात पर आप खुद बंदे के हक को गालिब करार देते हैं, और यही दलील पेश करते हैं आप कि बंदा मोहताज है और अल्लाह बेनियाज है, लिहाजा बंदे के हक को गालिब होना चाहिए। तो उसका जवाब याद रखिएगा, जवाब यह कि ऐसी सूरत जहां दोनों हकों को जमा करना मुमकिन ही ना हो, तो फिर वहां तो हम भी बंदे के हक को गालिब करार देते हैं, क्योंकि बंदा मोहताज है और अल्लाह ताला गालिब हैं। लेकिन ऐसा मकाम जहां दोनों हकों को जमा करना मुमकिन हो तो वहां हम इसी सूरत को इख्तियार करते हैं, और यहां हद कजफ के अंदर दोनों हकों को जमा करना मुमकिन है कि अल्लाह के हक को गालिब करार दे दिया जाए तब भी बंदे के हक की रियायत हो जाती है। अगर दोनों हकों की रियायत मुमकिन ना होती, अगर दोनों हकूक को जमा करना मुमकिन ना होता, तो फिर हम भी बंदे के हक को गालिब करार दे देते, जैसे इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने किया है भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया था कि ये वो मशहूर जाबता है जिस पर बहुत से मुख्तलिफ फुरुआत निकलती हैं, जिनमें हमारा और शवाफिया का इख्तिलाफ है। शवाफिया के नजदीक चूंकि यह हद कजफ जो है हकुल अब्द है, लिहाजा इसके अंदर वरासत भी जारी होगी, और नीज इसके अंदर मकजूफ जो है वो मुआफ भी कर सकता है, और नीज इसके अंदर उनके नजदीक इवज लेना भी जायज है, क्योंकि यह बंदे का हक है, लिहाजा हद कजफ के बदले में वो माल भी ले सकता है, और नीज इसी तरह उनके नजदीक इसमें तदाखुल भी नहीं होगा। अगर बंदे अलग अलग हैं या इल्जाम अलग अलग जिना का है तो फिर इसमें तदाखुल भी नहीं होगा। एक ही आदमी पर एक ही जिना का इल्जाम बार बार लगाए फिर तो कहते हैं तदाखुल हो जाएगा शवाफे के नजदीक, क्योंकि एक ही बंदे पर एक ही जिना का इल्जाम कई दफा लगाया है तो वो एक ही जिना का इल्जाम है, लिहाजा वहां तो तदाखुल होगा, एक ही हद आएगी। लेकिन अगर मुख्तलिफ बंदों पर जिना के इल्जाम लगाए हैं तो यह हकुल अब्द है, और हकुल अब्द के अंदर तदाखुल नहीं होता, लिहाजा हर बंदे के लिए अलग अलग हद कजफ इसको लगाई जाएगी। या एक ही आदमी पर इल्जाम लगाया है लेकिन अलग अलग जिना का इल्जाम लगाया है, एक दफा इल्जाम लगाया कि तुमने फुला वक्त फुला औरत से जिना किया था, दूसरे वक्त इल्जाम लगाया कि तुमने फुला दूसरी औरत के साथ फुला वक्त जिना किया था, तीसरे वक्त एक तीसरी औरत का इल्जाम उसी एक आदमी पर लगाया, तो इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि यहां पर तीनों अलग अलग जिना है, एक ही आदमी पर इल्जाम है लेकिन तीन अलग अलग जिना का इल्जाम है, तो लिहाजा यहां अलग अलग हद कजफ लगेगी, यहां तदाखुल नहीं होगा। जबकि हमारे नजदीक इसके अंदर हकुल्लाह गालिब है, लिहाजा चाहे एक आदमी पर जिना का इल्जाम लगाए चाहे मुख्तलिफ आदमियों पर जिना का इल्जाम लगाए, तमाम सूरतों के अंदर तदाखुल हो जाएगा, एक ही हद कजफ सबके लिए काफी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का हक गालिब है, और नीज इसके अंदर वो जो मखजूफ है वो इस हद कजफ का इवज नहीं ले सकता, इसके बदले में माल नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हकुल्लाह गालिब है। और नीज इसीलिए हमारे नजदीक इसमें वरासत भी जारी नहीं होती भाई, और नीज इसीलिए हमारे नजदीक यहां मकजूफ माफ करना चाहे, जब काजी के पास एक दफा इल्जाम साबित हो गया तो अब मकजूफ जो है वो माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का हक गालिब है भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर किसी शख्स ने किसी पर जिना का इल्जाम लगाने का इकरार कर लिया और बाद में वो रुजू करता है तो उसका रुजू मोतबर नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पर मकजूफ जो है वो उसको झुटला रहा है, तो यहां झुटलाने वाला मौजूद है, जबकि हद जिना और हद सरिका जो है वहां अगर वो इकरार करने वाला अगर रुजू करता है तो हद साकित हो जाती है, क्योंकि वो खालिस अल्लाह का हक है, वहां पर झुटलाने वाला कोई नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया अगर किसी शख्स ने किसी अरबी से कहा या नबतीयो, मैंने बतलाया नबत एक कौम थी जो इराक के अंदर रहती थी और वो बुरे अखलाक वाले थे और गैर फसीह लोग थे, तो यहां पर जब एक अरबी को या नबती कहा तो यहां दरअसल तशबीह दी जा रही है उस कौम नबत के साथ बुरे अखलाक के अंदर या गैर फसीह होने के अंदर, यह कोई नसब की नफी नहीं कर रहा, लिहाजा यह जिना का इल्जाम नहीं, लिहाजा इस सूरत में हद कजफ नहीं आएगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने किसी अरबी से कहा कि तू अरबी नहीं है, लस्ता भी अरबी, इनके तो अरबी नहीं है, तो यहां पर भी उसे अरबी होने की जो नफी कर रहा है उसका मतलब जिना का इल्जाम नहीं है, बल्कि माना यह है कि तुम अरबों जैसे नहीं हो अपने अखलाक के एतबार से या अपनी फसाहत के एतबार से। तो मालूम हुआ ये अच्छे अखलाक की नफी करने के लिए या आदम फसाहत को बयान करने के लिए यूं कहा जाता है कि अंत लस्ता भी अरबी, इनके तो अरबी नहीं है, तो यह जिना का इल्जाम नहीं, लिहाजा इस सूरत में हद कजफ नहीं आएगी। और इसी तरह अगर एक आदमी ने दूसरे से कहा यबनमा इस समा या आसमान के पानी के बेटे, तो इस सूरत में भी उस पर हद नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि मा उस समा से मुराद है बारिश का पानी, और बारिश जो है वो तो आम होती है, हर शख्स को उसका फायदा पहुंचता है, तो मा उस समा जो है सखी आदमी के लिए अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, तो यबनमा इस समा का माना है ऐ सखी आदमी के बेटे, लिहाजा इसलिए यह कोई नसब की नफी नहीं कर रहा, यह तो तारीफ कर रहा है कि तुम एक सखी आदमी के बेटे हो, तो इस सूरत में हद कजफ नहीं आएगी। यानी इसी तरह बारिश का पानी बड़ा साफ सुथरा होता है, तो हुस्नो जमाल के अंदर भी बाज औकात इसकी तरफ निस्बत की जाती है, जैसे बारिश का पानी खूब साफ सुथरा और निखरा हुआ होता है, इसी तरह कोई शख्स बड़ा हसीनो जमील हो तो उसको भी मा उस समा कह दिया जाता है कि बारिश के पानी की तरह साफ सुथरा निखरा और खालिस है भाई, तो यबना मा इस समा कहने से हद नहीं आएगी भाई। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे की निस्बत की उसके चचा की तरफ या मामू की तरफ या मां के दूसरे खावंद की तरफ, तो इस सूरत में भी हद नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि इन सब को अब कहा जाता है अरबी जुबान में। और इसी तरह अगर एक शख्स ने दूसरे से कहा जना तफिल जबली, तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस पर हद कजफ आएगी। मैंने बतलाया था जना यजनी जो है ये जिस तरह नाकिस है, इसी तरह ये या की जगह हमजा भी इस्तेमाल होता है, जना यजनी का माना भी जिना करना है, तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं जना तफिल जबल का माना यह है कि वो दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है कि तुमने पहाड़ में जिना किया है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जना का माना ऊपर चढ़ने के भी आते हैं, और यहां अल जबल का करीना भी मौजूद है, मालूम हुआ कहने वाले ने पहाड़ पर चढ़ने के माना का इरादा किया है। और चुनाचे फिर दलील के तौर पर कलाम अरब भी पेश किया कि एक अरब औरत जो है अपने बेटे से कहती है वरका इलल खैराती जीना अनफिल जबली, कि तू नेकियों पर चढ़ जा इस तरह जैसे कि पहाड़ में चढ़ा जाता है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब वो शख्स खुद माना बयान कर रहा है कि मैंने ऊपर चढ़ने के माना का इरादा किया था जना तफिल जबल से, तो उसकी तस्दीक की जाएगी और हद कजफ वाजिब नहीं होगी। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जना का फेल जैसे जैसे ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह जिना के माना में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए क्योंकि जिस तरह हमजा को हरफ इल्लत के साथ बदला जाता है, इसी तरह बाज अरब जो हैं वो हरफ इल्लत को हमजा के साथ भी बदल देते हैं, जैसे बाब जो है इसके अंदर वो कहते हैं बअबुन, बअबुन कहते हैं, और इसी तरह शाब भाई शाबुन जवान को कहते हैं तो उसमें वो शाबुन कहते हैं भाई। और बाकी जो पहाड़ का जिक्र आया कहते हैं भाई पहाड़ के जिक्र को आप करीना नहीं बना सकते क्योंकि अगर यहां ऊपर चढ़ने के माना का इरादा होता तो फी के बजाय वो आला जिक्र करता और यूं कहता जाना अता आलल जबली। तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस शख्स पर हद कजफ जारी की जाएगी अगर मकजूफ ने हद कजफ का मुतालबा किया भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया, एक आदमी ने दूसरे से कहा या जानी, दूसरे ने कहा ला बल अंता, नहीं बल्कि तू है, तो फिर इस सूरत में दोनों पर हद कजफ आएगी। दूसरे शख्स ने अगरचे खबर जिक्र नहीं की ला बल अंता कहा है लेकिन यह भी इसी तरह है जैसे उसने यूं कहा हो ला बल अंता जानिन, ला बल अंता जानिन के माना में है, इसलिए क्योंकि बल जो है माकबल कलाम में अगर कोई गलती हुई हो उसकी तलाफी के लिए आता है। तो यहां पर जो खबर पहले मजकूर थी उसी को दूसरे के लिए भी मजकूर मान लिया जाता है। इस पर इश्काल होता है या जानी ये तो निदा है ये तो खबर ही नहीं है, तो यहां आप दूसरे के लिए खबर कैसे निकालेंगे, अव्वल में खबर है ही नहीं, अव्वल तो निदा है तो सानी में जानी खबर कैसे निकाल ली। तो मैंने बतलाया था कि या जानी बज़ाहिर निदा है लेकिन ज़िमनन खबर है भाई, गोया निदा देने वाले को कह रहा है कि तुम्हारे अंदर यह वसफ मौजूद है इसीलिए मैं तुम्हें इस वसफ के साथ निदा दे रहा हूं। तो लिहाजा दोनों आदमियों को हद लगाई जाएगी। और जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा या जानिया और उसने जवाब में कहा ला बल अंता तो इस सूरत में सिर्फ औरत को हद कजफ लगाई जाएगी अगर खावंद ने मुतालबा किया। भाई मैंने आपको बतलाया था कि जब खावन अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाए तो उस सूरत में लियान किया जाता है। और मैंने बतलाया था लियान शहादतों का नाम है जिनके साथ कसम भी होती है। मसल खावन ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया या खावन ने अपने से बच्चे के नसब की नफी की तो बीवी उसको काजी के पास ले जा सकती है और काजी फिर दोनों में लियान करवाएगा। लिहाजा खावन पहले चार मरतबा शहादतें देगा कसम के साथ कि मैं गवाही देता हूं वल्लाह मैंने इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है उसमें सच्चा हूं, चार मरतबा यूं कहेगा और पांचवीं मरतबा कहेगा अगर मैं अपने इस इल्जाम में झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो गई। और औरत जो है फिर उसके बाद औरत जो है वो इसी तरह चार शहादतें देगी और कहेगी कि मैं गवाही देती हूं कि वल्लाह इस शख्स ने मुझ पर जो जिना का इल्जाम लगाया है इसमें झूठा है। और चार मरतबा यह शहादतें देने के बाद पांचवीं मरतबा औरत कहेगी कि अगर यह शख्स अपने इस इल्जाम में सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और फिर उसके बाद खावंद और बीवी में काजी जुदाई करवा देगा। और अगर बच्चे के नसब की उसने नफी की थी और यह बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में थी तो फिर इस सूरत में अगर यह लियान बच्चे के की नफी की वजह से हुआ था तो काजी इस बच्चे का नसब जो है वो मर्द से काटकर औरत के साथ जोड़ देगा। और यह भी याद रखना अगर उस खावंद ने बच्चे के नसब की नफी की है तो बच्चे के नसब की नफी को जिक्र करेगा कि वल्लाह मैंने इस औरत पर जो इल्जाम लगाया है बच्चे के नसब की नफी का मैं उसमें सच्चा हूं। और अगर दोनों इल्जाम लगाए हैं बच्चे के नसब की भी नफी की है और जीना का लफ्ज भी साथ सराहतन जिक्र किया है तो फिर दोनों को जिक्र करेगा कि वल्लाह मैंने इस औरत पर जो जीना का इल्जाम लगाया है और वल्लाह मैंने जो इस बच्चे के नसब की अपने आप से नफी की है मैं इसमें सच्चा हूं। और औरत भी इन दोनों को फिर जवाब में जिक्र करेगी। सूरत समझ में आ रही है? तो लिहाजा जब लियान कर लें काजी दोनों में जुदाई करवा देगा। और यह जो लियान है यह मर्द के लिए हद कजफ के दर्जे में है। किसके दर्जे में है? हद कजफ, क्योंकि अगर लियान ना होता तो इस आदमी पर हद कजफ जारी होनी थी, इसने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया है। और औरत के लिए यह हद जिना के दर्जे में है भाई। तो मालूम हुआ ये जो लियान है ये भी हद ही के माना में है, हद ही के दर्जे में है। और मैंने फिर आपको बतलाया था कि ज़ाबता याद रखना अगर किसी मकाम पर दो हदें आ रही हों लेकिन अगर एक हद को मुकद्दम करें तो दूसरी हद साकित हो जाती है तो फिर उसी हद को मुकद्दम करना वाजिब है ताकि दूसरी हद को टाल दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि फुकाहा की पूरी कोशिश होती है किसी तरह हद को टाल दिया जाए भाई। तो लिहाजा यहां पर औरत को जब हद कजफ लग जाएगी तो अब उसके बाद लियान नहीं हो सकता क्योंकि हद कजफ वाले की गवाही कभी कबूल नहीं की जाती। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, इनकी गवाही कभी भी कबूल ना करो। तो जब औरत को हद कजफ लग गई तो वह अहले शहादत न रही और लियान तो शहादतों ही का नाम था, लिहाजा अब यह अहले शहादत न रही तो लियान साकित हो गया। तो लिहाजा हद कजफ को मुकदम करेंगे लियान को साकित करने के लिए, और अगर हम लियान को मुकदम करें तो फिर तो हद कजफ साकित नहीं होती, लियान के बाद भी हद कजफ लगाना पड़ेगी। तो एक सूरत इख्तियार करें तो उसमें एक हद साकित हो जाती है, और दूसरी सूरत इख्तियार करें तो दोनों हदें लगाना पड़ती हैं, तो लिहाजा उस सूरत को इख्तियार करेंगे जिसमें एक हद साकित हो जाए। तो औरत को पहले हद कजफ लगा देंगे और फिर लियान साकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर इसके मुकाबले में खावंद ने बीवी से कहा या जानिया, ए जानिया, और बीवी ने जवाब में कहा जनई तू बिका, कि मैंने तेरे साथ जिना किया है, तो इस सूरत में ना हद आएगी औरत पर और ना लियान होगा। हद इसलिए नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि इस कलाम के अंदर दो इहतमाल हैं, दो माना हो सकते हैं। बीवी ने क्या कहा, जनई तू बिका, खावन ने कहा था ए जानिया, और बीवी ने कहा जनई तू बिका, कि मैंने तेरे साथ जिना किया है, या तो बीवी के कहने का मतलब यह है कि निकाह से पहले मैंने तुम्हारे साथ ही जिना किया था, तो गोया बीवी जिना का इकरार कर रही है। तो खावन ने इल्जाम लगाया, खावन पर हद कजफ आनी थी, लेकिन बीवी ने कबूल कर लिया, बीवी ने खावन को सच्चा कह दिया कि हां हम दोनों ने निकाह से पहले जिना किया था, तो खावन से तो हद कजफ साकित हो गई, लेकिन बीवी की तरफ से खावन पर इल्जाम हो गया कि हम दोनों ने क्या किया था, जिना, तो खावन पर इल्जाम हुआ, और खावन ने तो बीवी की तस्दीक नहीं की, लिहाजा यह तकाजा करता है कि बीवी को हद कजफ लगाई जाए। और लेकिन अगर इसमें दूसरे माना का भी इहतेमाल है, वो जो औरत ने कहा जाना ही तू भी का, मैंने तुझसे जिना किया है, इसमें दूसरे माना का भी इहतेमाल है कि हो सकता है बीवी के कहने का मतलब ये हो कि ये जो तुमने मेरे साथ हलाल वती की है, अगर इसको तुम जिना कहते हो तो हां ये जिना मैंने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि इसके अलावा तो मैंने किसी और को अपने ऊपर कुदरत नहीं दी। और उमूमन इस किस्म के मौके पर यही माना मुराद होता है, लेकिन बहरहाल पहले माना का भी इहतेमाल तो आ गया, तो अगर ये दूसरा माना मुराद ले लिया जाए तो इसके अंदर तो बीवी जिना की बात कर ही नहीं रही, वो तो उसी हलाल वती को वैसे जिना का नाम दे रही है, तो इस सूरत में लियान आता है भाई। तो अगर पहला माना लिया जाए कि निकाह से पहले वाला जिना मुराद लिया जाए तो औरत पर हद कजफ आती है, और दूसरा माना मुराद लिया जाए कि इस हलाल वती को वह जिना कह रही है, तो फिर इस सूरत के अंदर लियान आता है। तो शक आ गया हद कजफ के आने में और लियान के आने में, शक आ गया क्योंकि दोनों माना का इहतेमाल है, और आप जानते हैं कि शक की वजह से हुदूद साकित हो जाती हैं, तो ना हद कजफ आएगी और ना लियान आएगा, क्योंकि लियान भी हद के माना में है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वमन अकर रबी वलदिन सुम्मा नफाहू फइन्नहू युलाइनु। सूरत मसला यह कि एक शख्स ने अपने बच्चे के नसब का इकरार किया और फिर उसके बाद उसकी नफी कर दी, पहले बच्चे के नसब का इकरार किया और फिर उसकी नफी कर दी, या इसका बरअक्स होता है कि पहले बच्चे के नसब की नफी की और उसके बाद बच्चे के नसब का इकरार किया। मैंने आपको बतलाया था कि अगर कोई शख्स जो है बच्चे के नसब की नफी करना चाहता है तो बिल्कुल बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में वह नफी कर सकता है, उन दिनों में जिन दिनों के अंदर बच्चे के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, जिन दिनों में बच्चे की मुबारकबादें वसूल की जाती हैं, तो अगर कोई शख्स अपने से बच्चे के नसब की नफी करना चाहता है तो उन्हीं दिनों में इसको नसब की नफी करना पड़ेगी। अगर उन दिनों वो खामोश रहता है और बाद में आगे चलकर कुछ मुद्दत के बाद वो नसब की नफी करता है तो इस सूरत में याद रखो नसब की नफी नहीं होगी, अलबत्ता फिर लियान करना पड़ेगा। लियान बीवी अगर काजी के पास चली जाती है कि इसने मेरे बच्चे के नसब की नफी की है, मालूम हुआ ये मुझ पर जिना का इल्जाम लगा रहा है, तो फिर काजी दोनों में लियान करवाएगा और लियान के बाद दोनों में जुदाई करवा देगा, लेकिन बच्चे का नसब इसी आदमी से साबित है, इसी आदमी से साबित है, क्योंकि इसने इब्तदाई दिनों में नसब की नफी नहीं की थी। लेकिन अगर इब्तदाई दिनों के अंदर कोई शख्स बच्चे के नसब की नफी कर देता है तो फिर इस सूरत में भी लियान ही होगा, और जब मियां बीवी दोनों लियान कर लेंगे तो फिर काजी बच्चे के नसब को खावन से काटकर सिर्फ मां यानी बीवी के साथ जोड़ देगा। अब यह सिर्फ इस औरत का बच्चा शुमार होगा, इस खावन का बच्चा शुमार नहीं होगा। तो लिहाजा लियान कभी सिर्फ जिना का इल्जाम लगाने पर किया जाता है, लियान कभी बच्चे के नसब की नफी पर किया जाता है, और जब बच्चे के नसब की नफी पर लियान हो तो अगर ये इब्तदाई दिनों में नफी की थी तो यह मुअतबर होगी, बच्चे का नसब उस आदमी से कट जाएगा। लेकिन अगर यह लियान बाद में किया है तो फिर बच्चे के नसब की नफी खावन से नहीं होगी, बच्चा उसी का शुमार होगा भाई। अब सूरत मसला यह है कि एक शख्स की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया और इसने पैदाइश के इब्तदाई दिनों में पहले इकरार कर लिया कि यह बच्चा मेरा ही है, और फिर उसके बाद में उसने बच्चे के नसब की नफी कर दी, चाहे उन्हीं दिनों में नसब की नफी की चाहे कुछ मुद्दत के बाद की, लेकिन शुरू में एक दफा वो इकरार कर चुका है कि ये मेरा बच्चा है। तो याद रखो इस सूरत के अंदर लियान होगा, क्योंकि खावन ने पहले बच्चे के नसब का इकरार कर लिया है तो नसब तो साबित हो गया, नसब पे कोई असर अब नहीं पड़ेगा। हां, बीवी पर जिना का इल्जाम बाकी रह गया, क्योंकि बच्चे के नसब की नफी का इल्जाम बीवी पर लगाना इसका मतलब है वो बीवी पर जिना का इल्जाम लगा रहा है, तो बीवी काजी के पास जाकर हद का मुतालबा कर सकती है और फिर काजी दोनों में लियान करवाएगा, और जब दोनों लियान कर लेंगे तो खावंद और बीवी को एक दूसरे से जुदा कर देगा। अलबत्ता बच्चे का नसब साबित हो चुका है, जब शुरू में एक दफा खावंद ने इकरार कर लिया था तो बच्चे का नसब साबित हो चुका है, तो नसब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता लियान होगा। सूरत समझ में आ गई, फिर सुनिए क्या सूरत थी। खावन ने पहले बच्चे के नसब का इकरार किया और उसके बाद उसी जमाने में, उसके करीब के जमाने में या कुछ मुद्दत के बाद इसने बच्चे के नसब की नफी की, तो फिर इस सूरत में लियान आएगा और लियान की वजह से मियां बीवी में जुदाई भी आ जाएगी, लेकिन बच्चे का नसब साबित हो चुका है। दूसरी सूरत कि खावन ने पहले बच्चे के नसब की नफी की और फिर उसके बाद उसने बच्चे के नसब का इकरार कर लिया, तो फिर इस सूरत में याद रखो बच्चे का नसब अब भी साबित हो जाएगा। शुरू में खावन ने नफी की थी लेकिन बाद में खुद ही क्या कर लिया, इकरार। जब इकरार कर लिया बच्चे का नसब साबित हो गया, बच्चे का नसब तो साबित हो गया, लेकिन अगर बीवी फिर काजी के पास चली गई कि इस शख्स ने मेरे ऊपर जिना का इल्जाम लगाया है, इसने मुझ पहले नफी की थी, बाद में इकरार कर लिया है लेकिन इसने पहले नसब की नफी की थी, तो याद रखो इस सूरत में अब इस आदमी को हद कजफ लगाई जाएगी, अब लियान नहीं होगा। तवज्जो है, पिछले मसले में क्या था, पहले उसने इकरार किया था बच्चे का और फिर बाद में नफी की है, वहां लियान था, लेकिन यहां पर पहले नफी की तो गोया जिना का इल्जाम लगा दिया और फिर इकरार किया गोया बतला दिया कि मैंने झूठा इल्जाम लगाया था। जब झूठा इल्जाम लगाया था तो अब इस आदमी को हद कजफ लगाई जाएगी और लियान नहीं होगा। भाई लियान क्यों नहीं होगा, वजह यह कि लियान के अंदर मियां बीवी दोनों एक दूसरे को झुटलाते हैं, लियान में दोनों एक दूसरे को झुटलाते हैं, लिहाजा जब खावन ने एक दफा बच्चे के नसब की नफी कर दी तो गोया बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया और बीवी इसको झुटला रही है कि नहीं मैंने जिना नहीं किया, और खावन क्या कह रहा है, तुमने जिना किया है, और फिर बाद में खावन इकरार कर लेता है कि नहीं हां ये मेरा ही बच्चा है, गोया खावन ने अपने आप को ही झूठा करार दे दिया कि वो जो मैंने तुम पे पहले इल्जाम लगाया था उसमें मैं झूठा था। जब झूठा था तो अब खावन को हद कजफ लगाई जाएगी, लियान नहीं होगा। तवज्जो है, लियान क्यों नहीं होगा, फिर समझें लियान क्यों नहीं होगा, क्योंकि लियान उस वक्त होता है जब खावंद और बीवी दोनों एक दूसरे को झूठा करार दे रहे हों। खावंद कहता है तूने जिना किया है और बीवी कहती है मैंने जिना नहीं किया, तो फिर लियान होता है। तवज्जो है, और यहां पर खावंद ने पहले क्या कहा, तूने जिना किया है, और फिर क्या कहा, फिर बच्चे के नसब का इकरार कर लिया, गोया मान लिया कि मैंने इल्जाम लगाया था, अपने आप को झूठा करार दे दिया। जब खावन ने खुद ही अपने आप को झूठा करार दे दिया तो फिर लियान कैसे होगा, जब खावन ने खुद ही अपने आप को झूठा करार दे दिया है तो लियान कहां से होगा। लियान में तो खावन कहता है इस औरत ने जिना किया है, मैं सच्चा हूं, और बीवी कहती है मैंने जिना नहीं किया, ये आदमी झूठा है, दोनों एक दूसरे को झूठा करार दे रहे होते हैं तो वहां फिर लियान होता है। और यहां तो खावन ने खुद इकरार कर लिया कि मैंने जो इल्जाम लगाया था मैंने झूठ बोला था, मैंने इल्जाम लगाया था, तो अब लियान नहीं होगा क्योंकि यहां एक दूसरे को झूठलाना मौजूद नहीं, खावन अपने झूठा होने का इकरार कर चुका है। देखिए साहिब हिदायत इसको और बेहतर अल्फाज में बयान फरमाएंगे, कहते हैं वमन अकर्र बिवलदिन सुम्मा नफाहू, और जिस शख्स ने अपने औलाद का इकरार किया सुम्मा नफाहू, फिर उसकी नफी की, पहले इकरार फिर नफी फइन्नहू युलाइनु, तो यह शख्स लियान करेगा, लिअन्नन नसब लज़िमहू बिइक़रारिही, इसलिए क्योंकि बच्चे का नसब जो है वो तो लाजिम हो गया इसके साथ, बिइक़रारिही इसके इकरार की वजह से, वबिन्नफी बादहू और उसके बाद यह नफी करने की वजह से, सारा काज़िफन यह शख्स औरत पर जिना का इल्जाम लगाने वाला हो गया, फयुलाइनु तो यह लियान करेगा, पहले करार किया था नसब साबित हो गया, अब दोबारा नफी की है तो औरत पर जिना का इल्जाम लगा दिया, तो लिहाजा अब लियान करेंगे। वह इन नफाहू सुम्मा अकर्रा बिही हुद्दा, अब दूसरी सूरत, वह इन नफाहू, अगर एक शख्स ने पहले अपनी औलाद की नफी की, सुम्मा अकर्रा बिही फिर उसका इकरार कर लिया, हुद्दा अब इसको हद लगाई जाएगी, लिअन्नहु लम्मा अकज़बा नफ्सहु, इसलिए क्योंकि जब इसने अपने आप को झुटला दिया, बातलल लियान, तो लियान बातिल हो गया, लियान में तो दोनों खावंद और बीवी एक दूसरे को झुटलाते हैं, यहां खावंद ने पहले क्या किया, नफी की है तो इल्जाम लगाया, फिर बाद में इकरार कर लिया, मालूम अपने आप को ही झूठा करार दे दिया, तो जब अपने आप को झूठा करार दे दिया अब लियान नहीं हो सकता, खावंद ने इकरार कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा था, तो कहते हैं लिअन्नहु लम्मा अकज़बा नफ्सहु बतल लियान, इसलिए क्योंकि खावंद ने जब अपने आप को झुटला दिया तो लियान बातिल हो गया, लिअन्नहु हद्दुन ज़रूरीयुन सीर इलैही ज़रूरत तकाज़ुबी, तकाज़ुब देखो बाबे तफाउल है और बाबे तफाउल जानिबैन से फेल चाहता है, देखो लियान कब होता है, जब खावंद और बीवी दोनों एक दूसरे को झुटला रहे होते हैं, खावंद कहता है तूने जिना किया है, औरत कहती है मैंने नहीं किया, तो दोनों एक दूसरे को झुटला रहे होते हैं, तो वहां तकाजुब होता है, तकाजुब बाबे तफाउल है, दोनों एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं, तो कहते हैं लिअन्नहु हद्दुन ज़रूरीयुन, इसलिए क्योंकि लियान जो है वो जरूरी हद है, यानी जरूरत की वजह से आती है, लियान हद के माना में है लेकिन जरूरत की वजह से आती है, और वो जरूरत क्या कि खावंद और बीवी दोनों एक दूसरे को झुटला रहे हैं, और यहां कोई सूरत नहीं थी फैसला करने की, लिहाजा लियान करवा दिया गया। कहते हैं लिअन्नहु हद्दुन ज़रूरीयुन सीरा इलैहि ज़रूरत तकादुबी, अच्छा लिअन्नहु हद्दुन ज़रूरीयुन, लिहाजा लियान एक ऐसी हद है, ज़रूरीयुन, ज़रूरीयुन का तर्जमा यूं करें लिअन्नहु हद्दुन ज़रूरीयुन, इसलिए क्योंकि लियान ऐसी हद है, ज़रूरीयुन जो जरूरत की वजह से साबित है, सीरा इलैही ज़रूरत तकादुबी, बाहम एक दूसरे को झुटलाने की जरूरत की वजह से इसकी तरफ जाया जाता है, सीरा इलैही इसकी तरफ जाया जाता है, जरूरत तकाज़ुबी एक दूसरे को झूठलाने की जरूरत की वजह से, वल असलु फीही हद्दुल क़ज़्फी, और असल तो इसके अंदर हद क़ज़्फ है, असल तो हद क़ज़्फ है, खावन ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया है तो असल में तो खावन को हद क़ज़्फ लगनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि खावन और बीवी दोनों एक दूसरे को झूठला रहे हैं इसलिए हमें मजबूरी की वजह से लियान की तरफ जाना पड़ता है, और जब लियान साकित हो गया, खावन ने अपने आप को झुटला दिया, पहले कहा था बच्चा मेरा नहीं और फिर कह दिया बच्चा मेरा है, मालूम है इसने अपने आप को ही झूठा करार दे दिया, तो अब लियान की तरफ तो अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि लियान तो जरूरत की वजह से था, अब असल की तरफ जाएंगे, और असल क्या है, हद क़ज़्फ के, खावन ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया है तो खावन को हद क़ज़्फ लगाई जाएगी, तो यह माना है वल असलु फीहि हद्दुल क़ज़्फ, और असल जो है इसके अंदर हद क़ज़्फ है, फ़ाइदा बतला तकादुब युसारु इलल असली, तो जब बाहम एक दूसरे को झुटलाना बातिल हो गया तो युसारु इलल असली, तो असल की तरफ जाया जाएगा भाई, वल वलदु वलदुहु फिल वजहैन लिइक़रार बिही साबिकन औ लाहिकन, अच्छा भाई साहिब हिदाया यहां से बतला रहे हैं, ये मतन है, वल वलदु वलदुहु, बच्चा उसी आदमी का बच्चा है, चाहे पहले इकरार करे फिर नफी करे, बस एक दफा इकरार कर लिया तो नसब साबित हो चुका है, या पहले नफी करे बाद में इकरार करे तो भी नसब साबित हो जाएगा, तो कहते हैं वल वलदु वलदुहू, और औलाद जो है वो उसी आदमी की औलाद होगी, फिल वजहैनी दोनों सूरतों में, लिइकरारिही बिही साबिकन औ लाहिकन, बवजह उस आदमी के इकरार कर लेने के, साबिकन औ लाहिकन पहले या बाद में, यानी नफी से पहले या नफी के बाद दोनों में इसने इकरार किया है, वल्लियानु यसिहु बिदून क़त्अ नसबी, यहां इश्काल होता है, इश्काल ये कि जब पहली सूरत में जब इसने पहले इकरार किया और फिर नफी की, आपने कहा उस सूरत के अंदर भी बच्चे का नसब साबित हो जाएगा, तो फिर तो लियान नहीं आना चाहिए, जब बच्चे का नसब साबित हो रहा है तो कहते हैं भाई लियान के अंदर नसब की नफी जरूरी नहीं है, हम पहले बयान कर चुके हैं। लियान के अंदर नसब की नफी जरूरी नहीं, बल्कि बच्चा ना हो फिर भी लियान हो जाता है। खावन ने जिना का इल्जाम लगाया, बच्चा ही ना हो फिर भी लियान होता है, तो बच्चा हो तो भी उसमें लियान के बावजूद बच्चे के नसब की नफी जरूरी नहीं। तो कहते हैं वल्लियान यसिहु बिदून कत्अ नसबी, और लियान सही होता है नसब काटे बगैर ही, कमा यसिहु बिदून वलदी, जैसे कि लियान सही होता है बगैर औलाद के ही। व इन قال ليس ابني ولا ابني की फलाहत द वला लियाना। सूरत मसला ये, एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया, खावन ने कहा ना ये तेरा बेटा है ना मेरा बेटा है, तो क्या इस सूरत में हद आएगी, क्या ये जिना का इल्जाम है? कहते हैं नहीं, इस सूरत में ना हद है और ना लियान है, ये तो उस बच्चे की पैदाइश की नफी कर रहा है। जब औरत से कह रहे हैं ना तेरा बच्चा है ना मेरा बच्चा है, मतलब ये है कि इसको तूने पैदा नहीं किया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन काला, और अगर खामन ने बीवी से कहा लैसा बिबनी वला बिबनी की, कि ना ये मेरा बेटा है और ना ये तेरा बेटा है, वला हद वला लियान, तो ना हद होगी और ना लियान होगा, लिअन्नहु अनकर अलविलादता, इसलिए क्योंकि इस आदमी ने इस बच्चे की पैदाइश की नफी की है। वह बिही ला यसीरु कादिफन, और इसकी वजह से यह जिना का इल्जाम लगाने वाला नहीं हुआ भाई। वमन कदफम रातन व माहा औलादुल्ला युआरफुलहुम अबुन औकदफल मुला अनतबि वलदिन वल वलदु हय्युन औकदफहा बाद मौतिल वलदि फला हद्द अलैह। यहां तक मतन था भाई। सूरत मसला ये, एक औरत के साथ खामंद ने लियान किया था बच्चे की वजह से। इब्तिदाई दिनों के अंदर खावन ने बच्चे के नसब की नफी की थी, तो उन दिनों में फिर लियान हुआ और फिर काजी ने बच्चे का नसब काट कर सिर्फ औरत से जोड़ दिया। अब ये सिर्फ इस औरत का बच्चा है, इस खावन का बच्चा नहीं है। और फिर इस औरत पर किसी ने जिना की तोहमत लगाई, चाहे ये बच्चा जिंदा था उसी वक्त तोहमत लगाई, या बाद में किसी वजह से बच्चा हलाक हो गया उसके बाद किसी वक्त किसी आदमी ने इस औरत पर जिना की तोहमत लगाई, या एक औरत है उसके पास उसका बच्चा है लेकिन उसके बाप का पता नहीं है, इस जैसी औरत पर किसने जिना की तोहमत लगाई, तो क्या यह इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ साबित होगी? कहते हैं नहीं, हद कजफ साबित नहीं होगी, इसलिए क्योंकि इस औरत के पास एक ऐसा बच्चा मौजूद है, या एक ऐसा बच्चा मौजूद था, अब तो हलाक हो चुका है लेकिन पहले एक बच्चा मौजूद था जिसके नसब का पता नहीं था, और यह अलामत है जिना की, ये जिना की अलामत है। तो लिहाजा जब जिना की अलामत मौजूद है उसके बाद कोई शख्स इस औरत पर जिना की तोहमत लगा रहा है, तो फिर अब हद कजफ नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि हद कजफ के लिए मुहसन होना जरूरी है, और जब इस औरत के अंदर जिना की अलामत मौजूद है तो फिर ये औरत मुहसना नहीं, जब मुहसना नहीं है तो गैर मुहसन पर जिना का इल्जाम लगाने से हद साबित नहीं होती। तो कहते हैं वमन कदफम रातन, और जिस शख्स ने किसी औरत पर जिना की तोहमत लगाई, जिना का इल्जाम लगाया, व माहा औलादुल्ला युआरफुलहुम अबुन, और उस औरत के साथ ऐसी औलाद है, ला युआरफुलहुम अबुन, के उनके बाप का पता नहीं है, उनके बाप को कोई जानता नहीं है, औ कज़फल मुलाअनता बिवलदिन, ये मुलाअना, ये इसमें मफ़ऊल का सीगा भी पढ़ सकते हैं आयन पर फतहा मुलाअना, और इसमें फाइल भी पढ़ सकते हैं मुलाइना था, तवज्जो है मुलाइना, अगर इसमें फाइल पढ़ें तो माना होगा लियान करने वाली, यानी वो औरत जिसने अपने खावन से लियान किया है, और मुलाअना यानी वो औरत जिसके साथ लियान किया गया, यानी खावंद ने क्या किया है इसके साथ लियान, तो दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं औकद अफल मुला अनता बी वलदीन, या किसी शख्स ने जीना का इल्जाम लगाया, अल मुला अनता बी वलदीन, ऐसी औरत पर कि जिसके साथ बच्चे की वजह से लियान किया गया है, इल्जाम लगाया ऐसी औरत पर जिसके साथ बच्चे की वजह से लियान किया गया है, वल वलदु हय्युन, इस हाल में कि वो बच्चा जिंदा है, औ कज़फहा बाद मौतिल वलदी, या उस शख्स ने उस औरत पर जिना का इल्जाम लगाया है उस औलाद की मौत के बाद, फला हद अलैही, तो इस इल्जाम लगाने वाले पर हद नहीं है, लिकियाम अमारत जिना मिनहा, अमारत कहते हैं निशानी को, निशानी और अलामत, लिकियाम अमारत जिना मिनहा, इस वजह से कि जिना की निशानी कायम है, तो इस औरत के साथ जिना की निशानी मौजूद है भाई। इस वजह से कि यहां एक जिना की निशानी मौजूद है भाई, और वो ऐसा बच्चा है जिसके बाप का पता नहीं। तो कहते हैं लिकियाम अमारत जिना मिनहा, इस वजह से कि इस औरत की तरफ जो है जिना की निशानी मौजूद है। वही विलादतु वलदिन ला अबलहू, और ये पैदाइश है ऐसी औलाद की जिसका बाप नहीं है, ये अलामत है भाई। फफातिल इफ्फतु नजरन इलैहा, तो इस औरत की पाकदामनी फौत हो गई इस निशानी की तरफ नजर करते हुए, मालूम हुआ ये औरत पाकदामन नहीं है। वही शर्तुल इहसानी, और पाकदामन होना यह तो मोहसन होने की शर्त है कि जिना से पाकदामन होना चाहिए। आगे देखिए, वलौ कदफम रअतन ला अनत बिगैरी वलदिन फअलैहिल हद। सूरत मसला ये, एक औरत ने खावंद के साथ लिहान किया था लेकिन बच्चे की वजह से नहीं, बच्चे की वजह से नहीं, यानी खावंद ने जिना का इल्जाम लगाया था और फिर औरत ने लिहान किया और दोनों में जुदाई करवा दी गई। तो अब इस औरत पर किसने जिना का इल्जाम लगाया तो फिर क्या उसको हद लगाई जाएगी? कहते हैं हां, यहां कोई जिना की निशानी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बगैर बाप के बच्चा यहां मौजूद नहीं है, लिहाजा इस सूरत में इस इल्जाम लगाने वाले को हद लगाई जाएगी अगर औरत ने हद कजफ का मुतालबा किया। तो कहते हैं वलौ कदफम रअतन ला अनत बिगैरी वलदीन, और अगर किसी ने जिना का इल्जाम लगाया ऐसी औरत पर जिसने बगैर औलाद के लियान किया था, फअलैहिल हद, तो इस शख्स पर हद वाजिब होगी। लिन इदामी अमारत जिना, जिना की अलामत न पाए जाने की वजह से। قال ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه। भाई याद रखो, याद रखो, यहां से जाब्ता जिक्र फरमाएंगे कि जिस शख्स ने भी हराम वती की गैर मिल्कियत में और उस पर किसने जिना का इल्जाम लगाया तो उस इल्जाम लगाने वाले को हद नहीं लगाई जाएगी। साहिब हिदाया आपको जाब्ता बतलाएंगे, जाब्ता बतलाएंगे कि एक वती है हराम ली आईनी ही, एक वती है हराम ली गैरी ही। अगर किसी शख्स ने ऐसी वती की जो हराम ली आईनी ही है, जो अपनी जात के एतबार से ही हराम है, तो इस जैसे शख्स को अगर कोई जिना का इल्जाम लगा देगा तो उस पर हद जिना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वती हराम ली आईनी ही, वो वती जो अपनी जात के एतबार से ही हराम हो उसी को तो जिना कहते हैं। जिना क्या है? अपनी जात के एतबार से ही हराम है, तवज्जो है। लिहाजा किसी शख्स ने ऐसी वती की जो हराम ले आईनी ही है, जो अपनी जात के एतबार से ही हराम है, और फिर बाद में इस आदमी को कोई जानी कह देता है तो उस इल्जाम लगाने वाले पर हद नहीं आएगी, क्योंकि इस शख्स ने हराम ले आईनी ही वती की थी और हराम ले आईनी ही वती ही को तो जिना कहते हैं। जबकि एक वती है हराम ली गैरी ही, यानी वो वती जो किसी गैर किसी और वजह से हराम हुई है, अपनी जात के एतबार से हराम नहीं। जैसे बीवी के साथ सोहबत कर ली हालत हैज में, अब बीवी के साथ तो खावन के लिए वती जायज थी लेकिन यहां हालत हैज में हराम है, तो हराम होने की वजह यह नहीं कि यह वती ही हराम थी, यह हैज जो है यह रुकावट बन गया और मान्या बन गया। तो यह किस किस्म की वती है? ये अपनी जात की वजह से हराम है या हैज की वजह से हराम है? तवज्जो है भाई। देखो, एक वती होती है अपनी जात के एतबार से हराम है, एक आदमी एक अजनबी औरत के साथ वती करता है तो ये वती अपनी जात के एतबार से हराम है, यहां हलाल होने की कोई सूरत ही नहीं है, तो ये वती हराम है अपनी जात के एतबार से। और एक वती होती है जो अपनी जात के एतबार से हराम नहीं, किसी सबब की वजह से हराम हो गई। जैसे एक शख्स जो है अपनी बीवी से सोहबत करता है हालत हैज में, आप जानते हैं बीवी के साथ हालत हैज में सोहबत करना हराम है, तो ये हराम तो है वती लेकिन अपनी जात के एतबार से नहीं, क्योंकि ये तो इसकी बीवी है, बल्कि यहां जो हैज की रुकावट आ गई, मालूम है ये जो हैज की हालत में वती है यह अपनी जात के एतबार से नहीं हराम क्योंकि यह तो इसकी बीवी है, बल्कि हैज की वजह से हराम है, तो यह हराम ली गैरी ही हुई। तवज्जो है, मालूम हो हराम वती कितनी किस्म की है? दो, एक हराम ले आईनी ही, एक हराम ले गैरी ही। याद रखो, कोई शख्स अगर हराम ले आईनी ही वती कर दे और फिर कोई इसको जानी कह दे तो इस इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ नहीं आएगी, क्योंकि उस शख्स ने हराम ले आईनी ही वती की है और हराम ले आईनी ही वती ही तो जिना है भाई। और जिस शख्स ने हराम ले गैरी ही वती की है उसको अगर कोई जानी कह दे तो उसको हद लगाएंगे। लिहाजा एक शख्स ने अपनी बीवी से हैज की हालत में सोहबत कर ली और बाद में इसने जाकर कुछ लोगों को बता दिया कि मैंने तो हालत हैज में वती कर ली है, उनमें से एक आदमी ने इसको कहा ऐ जानी ऐ जिनाकार, तो याद रखो ये शख्स इसको काजी के पास ले जाकर हद कजफ का मुतालबा कर सकता है, क्योंकि इसने जो वती की वो अगरचे हराम थी लेकिन वो जिना नहीं। जिना तो कौन सी हराम वती होती है, जो हराम ले आईनी ही हो गई और ये तो हराम ले गैरी ही थी। सूरत समझ में आ गई। फिर साहिबे हिदाया आपको जाब्ता बतलाएंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई वती हराम ले आईनी ही है या हराम ले गैरी ही है। तो साहिबे हिदाया बड़ा आसान सा जाब्ता आपको बतलाएंगे कि भाई जहां पर वती करने वाले की मिल्कियत ना हो वो हराम ले आईनी ही है, चाहे पूरी ही मिल्कियत ना हो या चाहे कुछ ना हो। मसलन एक आदमी किसी दूसरे की बांदी से वती करता है, यहां तो इस आदमी की मिल्कियत सिरे से है ही नहीं, तो ये वती हुई किस में, गैर मिल्क में। तवज्जो है, वती हुई गैर मिल्क में, और जब भी वती गैर मिल्क में पाई जाएगी वो हराम ले आईनी ही है। तवज्जो है आप, ये तो एक सूरत थी, किसी और की बांदी से वती की तो ये गैर मिल्क में वती है तो ये हराम ले आईनी ही है, लिहाजा ये जीना है। तवज्जो है। दूसरी सूरत, एक बांदी दो आदमियों में मुश्तरका थी, और आपको मैंने बताया था जब बांदी कई आदमियों में मुश्तरका हो तो किसी एक के लिए भी उसके साथ सोहबत जायज नहीं होती, तो दोनों मालिक जो हैं उनके लिए इस बांदी से सोहबत हराम है, लेकिन दोनों में से एक ने इस बांदी के साथ सोहबत कर ली। अब मुझे बताइए ये वती इसने मिल्क में की या गैर मिल्क में। बाज एतबार से देखें तो मिल्क है, बाज एतबार से देखें गैर मिल्क है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो दूसरे आदमी का है, तो बहरहाल गैर मिल्क है या नहीं, गैर मिल्क तो आ गया, चाहे पूरे तौर पर नहीं आया लेकिन कुछ तो आ गया, तो यह वती हराम ले आईनी ही है। मालूम हुआ यह जीना है। क्या जाब्ता हुआ कि वती गैर मिल्क में हो तो वो हराम ले आईनी ही है, चाहे पूरी की पूरी गैर मिल्क हो चाहे थोड़ी सी गैर मिल्क हो। एक शर्त तो यह है कि वती गैर मिल्क में हो तो वो हराम ले आईनी ही है। दूसरा जाब्ता यह है, अगर वो औरत हराम है मुअब्बत तरीके पर, हमेशा के लिए हराम है, तो उसके साथ जो वती है वो भी हराम ले आईनी ही है। वो औरत जो हराम है हमेशा के लिए, हुर्मत मुअब्बदा है वहां पर, महरम है भाई, महरम है, वहां निकाह की कोई सूरत ही नहीं है, तो इस किस्म की जो वती होगी जो उस औरत के साथ की जाए जिसमें हुर्मत मुअब्बदा थी, ये भी हराम ले आईनी ही है। लिहाजा एक आदमी ने बांदी खरीदी, अब ये शख्स इस बांदी का मालिक है, यहां गैर मिल्क नहीं है, पूरी की पूरी इस आदमी की मिल्कियत है, लेकिन इस आदमी ने और इस बांदी ने बचपन में एक ही औरत का दूध पिया था, तो ये इसकी रिजाई बहन भी है, और रिजाई बहन भी हकीकी बहन की तरह इंसान पर हमेशा के लिए हराम होती है। तो इस शख्स ने इस बांदी के साथ सोहबत कर ली, इस बांदी के साथ सोहबत कर ली, तो अगरचे गैर मिल्क यहां नहीं है, पूरी बांदी का यह मालिक है, लेकिन हुरमत कौन सी है, मुअब्बद, हमेशा के लिए हुरमत है, यहां निकाह की कोई सूरत ही नहीं है, तो लिहाजा ये जो वती है ये भी हराम ले आईनी ही है भाई। तो ये दो शर्तें, चाहे दोनों इकट्ठी हों चाहे एक पाई जाए, वो वती हराम ले आईनी ही होगी। कौन सी दो शर्तें, एक वो वती जो गैर मिल्क में हो और एक वो वती जो हुरमत मुअब्बदा के साथ की जाए, ये दोनों क्या है, हराम ले आईनी ही। जबकि इसके मुकाबले में अगर हुरमत गैर मुअब्बद हो, यानी हुरमत मुअक्कता हो, कुछ वक्त के लिए हुरमत है, तो फिर वो वती हराम ले आईनी ही नहीं। मसलन एक आदमी है, उसकी बांदी है और वो बांदी मजूसिया है, मजूसिया है, मुशरिका है भाई बांदी। भाई याद रखना, ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि शरीयत ने मुसलमान मर्द को इजाजत दी है वो मुसलमान औरत से भी निकाह कर सकता है और अहले किताब औरत से भी, यानी यहूदी या ईसाई से भी निकाह कर सकता है, लेकिन मुशरिका औरत के साथ निकाह की इजाजत नहीं है। इसी तरह जिस तरह मुशरिका औरत से निकाह की इजाजत नहीं है, इसी तरह मुशरिका बांदी अगर है तो उसके साथ वती की भी इजाजत नहीं है। अगर बांदी मुसलमान है या अहले किताब है, यानी यहूदी या ईसाई, तो आका के लिए सोहबत जायज है, और अगर बांदी मुशरिका है फिर चाहे आका इसका मालिक है लेकिन वती उसके लिए भी हराम है। तो अब एक शख्स है उसकी मजूसिया बांधी है, मुशरिका बांधी है और ये उसके साथ वती कर लेता है, तो अब देखो यहां पर हुरमत मौजूद है, ये बांधी तो इस पर हराम थी लेकिन ये हुरमत मुअब्बद नहीं है, मुअक्कत है, कुछ वक्त के लिए है। भाई किस तरह कुछ वक्त के लिए है? भाई अगर यही बांधी मुसलमान हो गई तो अब खावंद के लिए सोहबत जायज हो जाएगी, यही बांधी ईसाई या यहूदी हो गई तो भी इसके साथ सोहबत जायज हो जाएगी। मालूम हुआ यहां हुरमत मुअब्बद नहीं है बल्कि हुरमत मुअक्कत है। तो अपनी मुशरिका बांदी से सोहबत करना यह हराम ली गैरी ही है
जी।
क्योंकि यह गैर मिल्क भी नहीं है, यह तो अपनी मिल्कियत है और नीज यहां हुरमत मुअब्बद भी नहीं, तो यह हराम तो है लेकिन हराम ली गैरी ही है। इस बांदी के साथ एक आदमी ने सोहबत कर ली और बाद में किसी ने इस आदमी पर इल्जाम लगाया कि तू तो जिनाकार है, तो याद रखो इस सूरत में यह आदमी हद कजफ का मुतालबा कर सकता है क्योंकि इसने जो वती की थी वह जीना नहीं, वह हराम ले गैरी ही तो है लेकिन हराम ले आईनी ही नहीं। इसी तरह अपनी बीवी से हैज की हालत में सोहबत कर ली, यह भी हराम ले गैरी ही है भाई। और इसी तरह अपनी मुकातबा से सोहबत कर ली। मैंने आपको बतलाया था कि मुकातब या मुकातबा वो गुलाम है जिसे आका मसलन कह देता है कि दो साल में तुम मसलन 20 लाख रुपए ले आओ तो तुम आजाद हो, और वो गुलाम या बांदी वो मंजूर कर लेते हैं, तो इस अकद को अकदे किताबत कहते हैं भाई। और ये जो मुकातब होता है ये आजाद आदमी की तरह होता है, आका का इस पर कोई कब्जा नहीं, आका इससे जबरदस्ती खिदमत नहीं ले सकता, ये जाएगा जाकर पैसे कमाएगा और अदायगी करके आजाद हो जाएगा। और ये अगर मुकातबा है बांदी है तो आका के लिए इससे सोहबत भी अब जायज नहीं है, आका के लिए सोहबत भी जायज नहीं। और फिर याद रखना ये जो मुकातब है इसका आजाद होना यकीनी नहीं, ये अगर वो किस्तें अदा कर देगा 2 साल के अंदर 20 लाख रुपए अदा कर देता है, मसलन यूं करो फर्ज करो 24 लाख रुपए हर महीने इन्होंने 1-1 लाख रुपया अदा करना है, तो 2 साल में 24 लाख रुपए मसलन उस पर अकद किया था वो अदा कर देंगे तो ये आजाद हो जाएंगे। आप ये अदायगी करते जा रहे हैं 2-4-5 महीने तक तो ये 1-1 लाख रुपया अदा करते रहे लेकिन उसके बाद 1-2 महीने ये अदायगी न कर सके तो आका काजी के पास जाकर कह सकता है काजी साहब ये पैसे अदा नहीं कर रहे, तो काजी उस अक़्द किताबत को फसख कर देगा और ये फिर पहले की तरह आम गुलाम बन जाएंगे
जी।
और आका के लिए पहले तो इस मुकातबा से सोहबत जायज नहीं थी लेकिन अब जब अक़्द किताबत फसख हो गया अब आका के लिए इससे सोहबत जायज हो जाएगी, यह आम बांदी बन जाएगी। ये इसी तरह वो मुकातब या मुकातबा खुद ही आ गए कि हमसे तो इतने पैसे नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने आजिज होने का इकरार कर लिया, तो इस सूरत में भी अक़्द किताबत खत्म हो जाएगा। अब भी आका के लिए उस मुकातबा से अब आम बांदी बन गई, आका के लिए उससे सोहबत जायज हो जाएगी। सूरत समझ में आ रही है? तो लिहाजा एक शख्स ने अपनी मुकातबा के साथ सोहबत कर ली तो याद रखो यह भी हराम ली गैरी ही है, हराम ली आईनी ही नहीं, तवज्जो है। लिहाजा इस पर अगर कोई जिना का इल्जाम लगाएगा तो यह आदमी उस पर हद का मुतालबा कर सकता है क्योंकि मुकातबा के अंदर अगरचे आका का कब्जा नहीं है लेकिन जात का तो वह अभी भी मालिक है, रकबा का तो अभी भी वह मालिक है भाई। और अगर यह अदायगी से आजिज आ गई या काजी ने अदायगी न करने की वजह से अक़्द किताबत फसख कर दिया तो फिर यह पहले जैसी आम बांदी बन जाएगी। मालूम हुआ आका की इसके अंदर मिल्कियत मौजूद है और ये जो हुरमत आई थी कि ये सोहबत नहीं कर सकता ये मुअक्कत थी या मुअब्बद थी? ये मुअक्कत थी, देखो ये आजिज आएगी तो वो हुरमत खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा अपनी मुकातबा से कोई आका सोहबत कर लेता है और फिर कोई इस आका पर जिना का इल्जाम लगाता है तो आका उस पर हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, काल वमन वती अवत अन हराम फी गैरी मिल की ही, और जिस शख्स ने हराम वती की फी गैरी मिल की ही अपनी गैर मिल्कियत के अंदर, लम यु हद काजिफ, तो इस शख्स पर इल्जाम लगाने वाले को हद नहीं लगाई जाएगी क्योंकि इसने अपने गैर मिल्कियत में वती की है और गैर मिल्कियत में वती हराम लिआइनी ही होती है भाई। तो कहते हैं लम युहद काजिफूहू, तो इस पर इल्जाम लगाने वाले को हद नहीं लगाई जाएगी। लिफवातिल इफ्फती, पाकदामनी के फौत हो जाने की वजह से, क्योंकि अब यह शख्स पाकदामन ना रहा, इसने ऐसी वती की है जो हराम ले आईनी ही थी, और इसी को तो जिना कहते हैं, तो इसने जब जिना कर लिया है यह पाकदामन ना रहा, लिहाजा अब इस पर इल्जाम लगाने वाला उस पर हद कजफ नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि वह तो सच बोल रहा है, वाकई इसने जिना किया है। तो कहते हैं लिफवातिल इफ्फती, पाकदामनी के फौत हो जाने की वजह से, वही शर्तुल इहसानी, और पाकदामन होना तो मोहसन होने की शर्त है, वली अन अल्कादिफा सादिकुन, और नीज इसलिए क्योंकि वो इल्जाम लगाने वाला वो तो सच्चा है, इसने वाकई जिना किया है भाई। वल असलु फीही, और जाबता इसके अंदर यह है कि अन मन वती अवत अन हराम लिआईनी ही, कि जिस शख्स ने हराम लिआईनी ही वती की, ला यजिबुल हद बि कज़फी ही, तो उस पर जिना का इल्जाम लगाने से हद वाजिब नहीं होगी। लिअन्न ज़िना हुवल वक़्उल मुहर्रम लिऐनिही, इसलिए क्योंकि ज़िना जो है वो भी वो वती है जो हराम लिऐनिही हो, वो ज़िना भी वो वती है जो हराम लिऐनिही हो। वह इनका ना मुहर्रमन लिगैरिही, और अगर वो वती हराम लिगैरिही है, यो हद दो, फिर हद लगाई जाएगी। एक शख्स ने हराम लिगैरिही वती की है और उस पर कोई ज़िना का इल्जाम लगाता है, तो उस काज़िफ को हद लगाई जाएगी। यह माना है वह इनका ना मुहर्रमन लिगैरी ही, और अगर वो वती जो है हराम लिगैरी ही है, तो यु हद दू, तो उस काजिफ को हद लगाई जाएगी। लिअन्नहु लैसा बिज़िना, क्योंकि ये जिना नहीं है। फलवत उफी गैर इल्मिल की मिन कुल्ली वजहिन औ मिन वजहिन हराम लिआइनी ही, मैंने आपको बतलाया एक शख्स गैर की बांदी से सोहबत करता है तो यह भी गैर मिल्क में वती कर रहा है, और अगर अपनी बांदी है लेकिन उसमें एक दो आदमी और भी शरीक हैं तो यह भी वती किस में है, गैर मिल्क में है, अगरचे पूरे तौर पर गैर मिल्क नहीं है लेकिन कुछ तो गैर मिल्क है भाई, तो यह भी हराम लिआइनी ही है। तो कहते हैं फलवत उफी गैर इल्मिल की, और वो वती जो गैर मिल्कियत के अंदर हो, मिन कुल्ली वजहिन औ मिन वजहिन, चाहे पूरे तौर पर हो या बाज एतबार से हो, गैर मिल्क में वती, चाहे वो पूरे तौर पर गैर मिल्क में हो चाहे बाज एतबार से गैर मिल्क के अंदर हो, तो ये जो वती है हराम उन लिआईनी ही, यह हराम लिआईनी ही है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं फलवक उफी गैर मिल्क की मिन कुल्ली वजहिन औ मिन वजहिन हराम उन लिआईनी ही, बस वो वती जो गैर मिल्क में हो पूरे तौर पर या बाज एतबार से, वो हराम लिआईनी ही है। वह कदल वक उफिल मिल्क वल हुरमतु मुअब्बदतुन, और इसी तरह वो वती जो मिल्कियत में हो लेकिन इस हाल में कि वो हुरमत मुअब्बद हो, तो भी यह हराम लिआईनी ही है। फइन कानत अल-हुरमतु मुअक्कततन, और अगर वह हुरमत मुअक्कत है यानी कुछ वक्त के लिए है, फल हुरमतु लिगैरिही, तो यह हुरमत लिगैरिही है। वह अबू हनीफा रहमहुल्लाह तआला यश्तरितु अन यकून अल-हुरमतु अल-मुअब्बदतु साबिततन बिल इजमाई औ बिल हदीस अल-मशहूर लितकून साबिततन मिन गैरि तरद्दुदिन। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह एक और शर्त भी लगाते हैं, वो फरमाते हैं कि वो जो हुरमत मुअब्बदा है वो इजमा से हुरमत मुअब्बदा साबित हो या हदीसे मशहूर से। एक वती है वहां हुरमत मुअब्बदा पाई जा रही है, लेकिन ये हुरमत मुअब्बदा इजमा से साबित हो या हदीसे मशहूर से साबित हो, तवज्जो है। लिहाजा अगर हुरमत मुसाहरत की वजह से हुरमत आई है तो फिर उसमें तो हमारा और शवाफिया का इख्तिलाफ है, हमारी वजह से हुरमत मुसाहरत यानी किसी मर्द ने किसी औरत से जिना किया तो उस औरत के उसूल और फुरू उस आदमी पर हराम हो जाते हैं, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, मुसाहरत जो है ससुराली रिश्ता एक नियामत है, वह हराम वती की वजह से यह नियामत हासिल नहीं हो सकती। तो देखो हुरमत मुसाहरत के अंदर भी हुरमत आती है उस मजनिया के उसूल और फुरू खावन पर हमेशा के लिए हराम हो गए हमारे नजदीक, लेकिन यह हुरमत मुअब्बदा इजमा से यह हदीस मशहूर से साबित नहीं है। तो इसको निकालने के लिए इमाम साहब फरमाते हैं कि हुरमत मुअब्बदा जो है वो इजमा से साबित हो या हदीस मशहूर से साबित हो तो फिर वो वती जो है वो हराम लिआइनी ही होगी। तो कहते हैं वह अबू हनीफा ता रहमहुल्लाह ताला यश्तरितु, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह शर्त लगाते हैं, अन यकूनल हुरमतुल मुअब्बदतु साबितातन बिल इजमाई औ बिल हदीसिल मशहूरी, कि वह हुरमत मुअब्बदा इजमा या हदीस मशहूर से साबित हो, लितकून साबितातन मिन गैर तरद्दुदिन, ताकि वह हुरमत बगैर किसी शक और शुबे के साबित हो, ताकि उसमें किसी किस्म का शक और शुबा न हो भाई। इसलिए क्योंकि हद का मामला है, हद कजफ का, और हद के मामले में शुबे से भी बचना जरूरी है भाई। आगे देखिए बयानहू, अब बयान है इसका भाई, वही जो मतन में आया था, जिसने गैर मिल्क में वती की तो ये वती हराम ले आईनी ही है, और इस पर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो इसको हद नहीं लगाई जाएगी। अब मुख्तलिफ सूरतें जिक्र करेंगे, किसी में वती हराम ले आईनी ही होगी और किसी में हराम ले गैरी ही होगी। तो कहते हैं बयान हो, बयान इसका यह है, कहते हैं अन्न मन कज़फ़ रजुलन वती अजारियतम मुश्तरकतम बैनहू व बैन आखरा, अन्न मन कज़फ़ रजुलन, एक शख्स ने तोहमत लगाई एक ऐसे आदमी पर, वती अजारियतम मुश्तरकतम बैनहू व बैन आखरा, जिसने वती की थी ऐसी बांदी से जो उसके और एक और आदमी के दरमियान मुश्तरक थी, एक मुश्तरका बांदी से एक आदमी ने सोहबत की है और दूसरे ने इस पर जिना का इल्जाम लगाया है, तो यह कौन सी वती हुई? यह वती हुई किस में? गैर मिल्क में, और गैर मिल्क चाहे अगरचे कुछ तो गैर मिल्क है, तो यह वती हराम ले आईनी ही है, लिहाजा इस पर कोई इल्जाम लगाए इस आदमी पर तो उस पर हद कजफ नहीं आएगी, क्योंकि इसने वाकई जिना किया है भाई। तो कहते हैं अन्न मन कज़फ़रा जुलन वती अजारियतम मुश्तरकतम बैन हुआ बैन आखरा, और जिस शख्स ने जिना का इल्जाम लगाया एक ऐसे आदमी पर जिसने अपने और दूसरे आदमी के दरमियान एक मुश्तरका बांदी के साथ वती की थी, फला हद अलैही, तो इस इल्जाम लगाने वाले पर हद नहीं है, लेन इदा मिल मिल्क मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि इस आदमी की मिल्कियत नहीं थी मिन वजहिन बाज एतबार से, तो यह गैर मिल्क में वती हुई भाई। वकदा इदा कज़फ़म रातन जनत फी नसरानियतिहा, सूरत मसला ये, एक औरत ईसाई थी वो मुसलमान हो गई, लेकिन जमाने ईसाइयत के अंदर इसने एक आदमी से जिना किया था और वो जिना साबित भी हो गया था और उसकी वजह से इस औरत को हद भी लगाई गई थी, तो अब ये मुसलमान हो गई है, मुसलमान होने के बाद एक आदमी ने इसको जानिया कहा, तो क्या इस आदमी को हद लगाएंगे? कहते हैं नहीं, इस आदमी को हद नहीं लगाएंगे, इसलिए क्योंकि शरअन इस औरत की तरफ से जिना हो चुका है, इसी वजह से तो इसको हद भी लगाई गई थी। तो कहते हैं वकदा इदा कज़फ़म रातन, और इसी तरह जब किसी शख्स ने जिना का इल्जाम लगाया ऐसी औरत पर, जनत फी नसरानियतिहा, जिसने जिना किया था अपने ईसाई होने की हालत में, अपने ईसाई होने की हालत में इसने जिना किया था यानी कुफर की हालत में, इसका भी यही हुक्म है, यानी इल्जाम लगाने वाले पर हद नहीं आएगी, लितहक्कुकि ज़िना मिन्हा शरअन, इसलिए क्योंकि शरअन इस औरत की तरफ से जिना पाया गया है, लिनइदामिल मिल्की, मिल्कियत मादूम होने की वजह से, क्योंकि वो आदमी जिसने इसके साथ जिना किया था उसकी इसके अंदर कोई मिल्कियत नहीं थी, न मिलके यमीन थी और न मिलके निकाह थी, और इसीलिए तो इस पर हद भी वाजिब हुई थी, अगर मिल्कियत होती तो फिर तो हद साबित नहीं हो सकती थी। तो कहते हैं लितहक्कुकि ज़िना मिन्हा शरअन, इस वजह से कि इस औरत की तरफ से जिना पाया गया है शरअन, लिनइदामिल मिल्क, इस जानी की मिल्कियत मादूम होने की वजह से कि उसकी इस औरत में कोई मिल्कियत नहीं थी, वलिहादा वजब अलैहल हद, और इसी वजह से तो इस औरत पर हद वाजिब हुई थी। वलव कज़फ़ रजुलन अता अमतहू, अब हराम लिगैरिही की कुछ मिसालें जिक्र करेंगे, एक शख्स अपनी मजूसिया बांदी से वती करता है, या अपनी बीवी से हालत हैज में वती करता है, या अपनी मुकातबा से वती करता है, तो ये सब हराम लिगैरिही हैं, इसमें अगर कोई इल्जाम लगाएगा तो फिर उस आदमी को हद लगाएंगे। तो कहते हैं वलव कज़फ़ रजुलन अता अमतहू, और जिस शख्स ने तो जिना की तोहमत लगाई एक ऐसे आदमी पर, अता अमतहू, जो अपनी बांदी के पास आया है यानी उसे सोहबत की है, वही या मजूसियतुन, इस हाल में कि वो बांदी मजूसिया है यानी सितारा परस्त है, मुशरिक है, औ इमरअतहू, यह वो ऐसा आदमी है कि इसने अपनी बीवी से सोहबत की है, वह या हाइज़ुन, इस हाल में कि वो हाइज़ा है, औ मुकातबतन लहू, यह एक शख्स ने अपनी ऐसी बांदी से सोहबत की है जो उसकी मुकातबा है, फअलैहिल हद, तो उस पर हद वाजिब है, यानी वो जिसने जिना का इल्जाम लगाया है इस आदमी पर, जिसने ये वाली हराम लिगैरिही वती की है, अपनी मुशरिका बांदी से वती की है या अपनी बीवी से हैज की हालत में वती की है या अपनी मुकातबा से वती की है तो यह वती हराम लगाई रही है, और इस आदमी पर कोई जिना की तोहमत लगाएगा तो उस काजिफ को हद लगाएंगे। तो यह माना है फालेहिल हद, तो उस काजिफ पर यानी उस जिना का इल्जाम लगाने वाले पर हद वाजिब होगी। لأن الحرمة مع قيام الملك, इसलिए क्योंकि यह हुरमत है मा قيام الملك, बावजूद मिल्कियत के पाए जाने के। ये वती हराम तो है लेकिन मिल्कियत तो पाई जा रही है, यहां तो गैर मिल्क किसी एतबार से भी नहीं है, लिहाजा ये हराम ले आईनी ही नहीं है बल्कि हराम ले गैर ही है। तो कहते हैं لأن الحرمة مع قيام الملك, इसलिए क्योंकि यह हुरमत जो है मिल्कियत के वजूद के साथ है। وهي مؤقتة, इस हाल में कि यह हुरमत मुअक्कत है मुअब्बद नहीं है। فَكَانَتِ الْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ, तो ये हुरमत लिगैरिही है। فَلَمْ يَكُنْ زِنًا, तो ये जीना नहीं है। وعن ابي يوسف رحمه الله, और इमाम यूसुफ रहमह अल्लाह से एक रिवायत है कि नवत अल मुकातबति युस्कितुल एहसाना, कि मुकातबा के साथ वती ये भी एहसान को साकित कर देती है। कोई आका अगर अपने मुकातबा से वती कर लेगा तो ये आका मोहसन न रहा, लिहाजा इस पर अगर कोई जिना का इल्जाम लगाएगा तो उस पर हद कजफ नहीं लगाएंगे। पीछे मतन में तो आ गया, मतन में तो आया अपनी मुकातबा से वती करेगा यह हराम ली गैरी ही है, यह हराम ले आईनी ही नहीं बल्कि हराम ले गैरी ही है, लिहाजा इससे मोहसन होना साकित नहीं होगा। इस शख्स पर कोई जिना का इल्जाम लगाएगा तो उसको हद कजफ लगाएंगे। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से एक रिवायत है, अपनी मुकातबा से भी कोई सोहबत कर लेगा तो उसका मोहसन होना साकित हो गया। अब इस पर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो उसको हद कजफ नहीं लगाएंगे। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है, अन्नवत अल मुकातबती युस्कितुल एहसाना, कि मुकातबा की वती जो है वो उस आका के मोहसन होने को साकित कर देती है। वह हुआ कौल जुफर रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम जुफर रहमहुल्ला का, लि अन अल मिल्क ज़ाइल फी हक़िल वती, इसलिए क्योंकि आका की जो मिल्कियत है वह खत्म हो चुकी है वती के हक में, आका वती का अब मालिक नहीं है। वह लिहाजा यल्ज़मुहुल उक्रु बिल वती, और इसी वजह से आका पर कर भी लाजिम होता है इस वती की वजह से। आका अगर अपनी मुकातबा से वती करेगा तो इसको ओकर देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ओकर भी महर ही को कहते हैं, लेकिन यहां नाम बदल दिया। वजह यह है कि महर तो उस वक्त कहते हैं जब निकाह हुआ हो, तो निकाह के अंदर जो माल लाजिम हुआ है वो है महर, लेकिन यहां तो कोई निकाह नहीं है, तो यहां जो माल वाजिब हुआ है उसको ओकर कहते हैं। तो वती बिशुबा की वजह से जो माल वाजिब हो उसको उकर कहते हैं, और मैंने बतलाया था आजाद औरत हो तो यह महरे मिसल होता है, और बांदी जो है बांदी के अंदर देखा जाएगा कि अगर इस जैसी बांदी होती किसी आका की, इसी जैसे हुस्नो जमाल वाली, इसी उम्र वाली और इसी जैसी सिफात वाली, तो वो आका अपनी इस बांदी का निकाह कितने माल में करवाता तो वो होगा उस बांदी का उकर। भाई इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, कहते हैं वलिहादा यल्ज़मुहुल उक्र बिल वती, और इसीलिए इस आका पर उकर यानी महर भी लाजिम हो जाता है इस वती की वजह से। आका अगर अपने मुकातबा से वती करे तो उसको महर देना पड़ता है, आका महर देगा और फिर वो मुकातबा वो तो किस्तें अदा कर रही है, तो यहां से भी उसको माल मिल गया, अब उसके जरिए भी वो अदायगी करेगी। भाई तो कहते हैं वलिहादा यल्ज़मुहुल उक्र बिल वती, और इसी वजह से उस आका पर जो है उक्र यानी महर वाजिब होता है वती की वजह से। वह नहनु नकूल, और हम कहते हैं हमारे नजदीक अपनी मुकातबा से वती करेगा तो यह हराम ले गैरी ही है, हराम ले आईनी ही नहीं। तो वह नहनु नकूल, हम कहते हैं मिल्कु ज़ाति बाकिन, के जात की मिल्कियत तो बाकी है। भाई देखो एक है रकबा और एक है कब्जा, आका का कब्जा तो मुकातब और मुकातबा से खत्म हो जाता है, वो आजाद आदमी की तरह है, लेकिन रकबा तो अभी भी उनका ममलूक है। अगर ये अकदे किताबत खत्म हो गया तो फिर वो पहले जैसे गुलाम और बांदियां बन जाएंगे। मालूम हुआ रकबा के अंदर आका की मिल्कियत बाकी है, यानी जात के अंदर, कब्जे के अंदर आका की मिल्कियत नहीं लेकिन जात के अंदर आका की मिल्कियत बाकी है। तो हम कहते हैं वनहनु नकूलु, और हम कहते हैं मिल्कु ज़ाति बाकिन, के जात के अंदर जो मिल्कियत है वो बाकी है। वल हुरमतु लिगैरिही, और ये जो हुरमत है ये हुरमत लिगैरिही है, क्यों इद हिया मुअक्कततुन, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए है। कुछ वक्त के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर ये मुकातबा आजीज आ गई पैसों की अदायगी से तो फिर इस सूरत में फिर ये आम बांदी बन जाएगी और आका के लिए सोहबत जायज हो जाएगी। मालूम हुरमत मुअब्बद नहीं है भाई। तो ये माना है, कहते हैं वल हुरमतुल गैरी ही, हुरमत जो है गैर की वजह से है, इद हिया मुअक्कतुन, क्योंकि यह हुरमत मुअक्कता है भाई। आगे देखिए, वलौ कद फरजुलन वतिअअमतहु वहिय उख्तुहु मिन अर्रज़ाअति ला युहद्दु। सूरत है मसला ये, एक आदमी ने एक बांदी से वती कर ली और ये जो बांदी है इसकी ममलूका है लेकिन इसकी रजाई बहन है, तो ये हुरमत कौन सी हुई? मुअब्बद। तो मिल्कियत बेशक मौजूद है लेकिन हुरमत तो मुअब्बद है। मालूम हुआ यह वती हराम लिआइनी ही है, लिहाजा इस आदमी पर अगर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो उस काजिफ को हद कजफ नहीं लगाई जा सकती। तो कहते हैं वलौ कद फरा जुलान, और अगर किसी शख्स ने इल्जाम लगाया ऐसे आदमी पर, तवज्जो है भाई, जगह जगह यह जाब्ता जारी हो रहा है, रजुलन नकेरा है और वती आ उसके बाद फेल आ रहा है, और नकेरा के बाद फेल आए तो फिर वो मौसूफ सिफत बनते हैं, और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं? मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। तो कहते हैं वला उक्का दफा रजुलन वतिअ अमतहु, और अगर किसी ने जिना का इल्जाम लगाया ऐसे आदमी पर जिसने अपनी बांदी से वती की है, वही उख्तुहु मिनर रजाअति, इस हाल में कि यह बांदी उसकी रजाई बहन है, ला युहद्दु, तो इस इल्जाम लगाने वाले को हद नहीं लगाई जाएगी, लिअन्नल हुरमत मुअब्बदतुन, इसलिए क्योंकि यह हुरमत मुअब्बद है हमेशा के लिए है। वहादा हुआ सहीह, और यही कौल सहीह है भाई। इमाम करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस काजिफ को हद लगाई जाएगी, लेकिन साहिब हिदायत ने बतलाया वहादा हुआ सहीह, यही कौल सही है कि इस आदमी का मुहसन होना खत्म हो चुका है, तो अब इसके काजिफ को हद नहीं लगाई जा सकती। आगे देखिए, वलौ कदफा मुकातबं वमा तवतरका वफा अन ला हद अलैह। याद रखो, मुकातब जो है वो अपनी किस्तें अदा करता है और जब पूरी अदायगी कर देता है तो आजाद हो जाता है। अब सूरत है मसला ये, एक मुकातब अपनी किस्तें अदा कर रहा था, दरमियान में इसका किसी वक्त इंतकाल हो गया, और जब इसके माल को देखा गया तो जितने इसके जिम्मे माल बाकी था उससे भी ज्यादा माल इसने छोड़ा है, यानी इतना माल है जिसे आराम से अदायगी हो सकती है। आप इस किस्म के मुकातब में जो अपने पीछे इतना माल छोड़कर मरे कि जिससे अदायगी हो सकती है, इस किस्म के मुकातब के बारे में सहाबा के दौर से इख्तिलाफ है। बास फरमाते हैं कि यह आजाद है जी। ये आजाद, जब यह आजाद है मालूम हुआ जो किस्तें बनती थी वो दे देंगे आका को, और जो बाकी माल बचा है वो सारा इस गुलाम के वारिस, ये अब आजाद हो चुका है, इसके वारिसों को मिलेगा बाकी माल इसके वारिसों को। और जबकि बास कहते थे नहीं, ये गुलाम ही मरा है, बेशक इसके पास माल मौजूद था इतना जिसे अदायगी कर सकता था, लेकिन अदा तो अभी तक नहीं किया था, जब अदा नहीं किया तो ये अभी भी गुलाम है, जब ये गुलाम है तो इसका सारा कुछ आका का है, तो वो सारा माल जो बाकी जायद माल है वो भी आका का हो जाएगा भाई। फर्क समझ में आ रहा है? तो ऐसा गुलाम जो मुकातब था और उसकी अदायगी से पहले उसका इंतकाल हो गया लेकिन इतना माल है जिसे वो अदायगी कर सकता था, तो इसको आजाद शुमार किया जाएगा या गुलाम? सहाबा के दौर से ही इसमें इख्तिलाफ है। अब एक आदमी है, उसने इस किस्म के मुकातब पर जिना का इल्जाम लगाया, मुकातब मर चुका है और उसने माल छोड़ा है जिससे पूरी अदायगी हो सकती है, इस पर उसने जिना का इल्जाम लगाया, तो क्या इस मुकातब के उसूल या फुरू जो हैं क्या वो इससे हद कजफ का मुतालबा कर सकते हैं? कहते हैं नहीं। वजह यह कि यहां इस मुकातब के अंदर इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ की वजह से शक आ गया इसके आजाद होने में। भाई देखो ना, अगर यह गुलाम मरा है तो यह गैर मोहसन है, क्योंकि मोहसन के अंदर तो आजाद होना जरूरी था, ये गुलाम है, जब गुलाम है तो गैर मोहसन है, और गैर मोहसन पर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो उस पर तो हद नहीं आती, और अगर ये आजाद हो चुका है तो फिर तो ये मोहसन है, फिर तो इस सूरत में उस इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ आनी चाहिए, तो लिहाजा अब ये आजाद मरा है या गुलाम मरा है इसमें इख्तिलाफ है, तो इसके अंदर शक आ गया, लिहाजा इस पर जिना का इल्जाम लगाने वाले पर भी हद कजफ नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हुदूद जो है वो शुबे की वजह से साकित हो जाती हैं। तो कहते हैं वला उकदफा मुकातब व माता, और जिस शख्स ने मुकातब पर जिना का इल्जाम लगाया व माता, इस हाल में कि वह मुकातब मर चुका है, व तारा का वफा अन, और उस मुकातब ने इतना माल छोड़ा है जिससे अदायगी हो सकती है। वफा यफी का माना है पूरी अदायगी करना, तो यहां वफा से मुराद है वो पूरा माल यानी जिसके जरिए अदायगी हो सकती है। तो मुकातब जो है वो मर चुका है, व तारा का वफा अन, और उसने पूरी अदायगी का माल छोड़ा है। ला हद अलैहि, तो इस इल्जाम लगाने वाले पर हद नहीं। लितमक्कुनि शुभति फिल हुर्रियति, इसलिए क्योंकि शुभा आ गया है फिल हुर्रियति, इसकी आजादी में। तमक्कुन का माना करार पकड़ना, लितमक्कुनि शुभति, शुभे के करार पकड़ने की वजह से, फिल हुर्रियति, इस मुकातब की आजादी में। लिमकान इख्तिलाफ सहाबति रजी अल्लाह तआला अन्हुम, लिमकान इख्तिलाफी ऐ लिवजूद इख्तिलाफी, मकान मस्तर है बमाने वजूद के। लिमकान इख्तिलाफ सहाबति रजी अल्लाह तआला अन्हुम, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के इख्तिलाफ पाए जाने की वजह से तो शुबा आ गया, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। लिहाजा इस मुकातब पर, जिना का इल्जाम लगाने वाले पर हद नहीं आएगी। आगे देखिए भाई, वलौ कदफा मजूसी यंतज़व्वज बि उम्मिही सुम्मा अस्लम युहद्द इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह वकाला ला हद अलैह। भाई सूरत है मसला ये, एक मजूसी है, उसने अपनी मां के साथ निकाह किया है, और उनके मजहब के अंदर यह जायज है महरम के साथ निकाह करना, महरम के साथ निकाह करना उनके मजहब में जायज है। तो क्या यह निकाह सही है या सही नहीं, आप ये इख्तिलाफ पढ़ चुके हैं बाबुन निकाही अहली शिर्क के अंदर, किताबुन निकाह के अंदर साहिब हिदाया ने बयान फरमाया था। भाई इमाम आजम अबू हनीफा रहमला फरमाते हैं कि ये जिम्मी है भाई, और हमने इनके साथ मुआहिदा किया है कि हम तुम्हारे मजहबी मामलात में दखल नहीं देंगे, और इनके मजहब के मुताबिक ये निकाह सही है, तो लिहाजा इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा और इनके साथ कोई तआरुज नहीं किया जाएगा। जब इनके मजहब के मुताबिक ये निकाह सही है तो यूं ही समझो ये निकाह सही ही है, इसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं। जबकि साहिबैन भी यही फरमाते हैं कि इनके मामले में कोई दखल नहीं दिया जाएगा, अलबत्ता वो फरमाते हैं कि यह निकाह जायज नहीं है, यह निकाह हुआ ही नहीं, क्योंकि महरम के साथ तो निकाह जायज ही नहीं, वहां क्योंकि कोई गुंजाइश ही नहीं। साहिबैन के बारे में मैंने बतलाया था कि साहिबैन फरमाते हैं कि जिम्मी जो हैं हमारे वो अहकाम जो इत्तेफाकी हैं, जिसमें फुकाहा का इत्तेफाक है, वो तो इन जिम्मियों पर भी लाजिम है, और जो मसाइल इख्तिलाफी हैं फुकाहा के दरमियान वो इन पर लाजिम नहीं। तो जिम्मी जब ममलिकत इस्लामिया में रहता है तो गोया उसने उन तमाम अहकाम को अपने ऊपर लाजिम करार दे दिया जो इजमाई और इत्तेफाकी हैं मुसलमानों के नजदीक, और जो इख्तिलाफी है इन्होंने उसका इल्तिजाम नहीं किया। और ये जो महरम से निकाह है ये तो बिल इत्तेफाक तमाम फुकहा के नजदीक हराम है, तो लिहाजा यहां भी ये जिम्मी ने जो अपनी महरम के साथ निकाह किया है ये निकाह सही ही नहीं है, ये निकाह हुआ ही नहीं। इमाम साहब तो फरमाते हैं निकाह हो गया क्योंकि इनके मजहब के मुताबिक निकाह सही है, लेकिन साहिबैन फरमाते हैं निकाह हुआ ही नहीं है, हां हम इनके मामले में दखल नहीं देंगे। इमाम साहब भी फरमाते हैं हम दखल नहीं देंगे, साहिबैन भी फरमाते हैं हम दखल नहीं देंगे, अलबत्ता फर्क यह है इमाम साहब फरमाते हैं इनका निकाह इनके मजहब के मुताबिक सही है तो इनका यूं समझो इनका निकाह हो चुका है, और साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं ये महरम के साथ निकाह जो है ये तो इजमाई मसला है, सबके नजदीक हराम है, और इन्होंने हमारे इत्तेफाकी मसाइल के मानने का इल्तिजाम किया है, लिहाजा इनका ये निकाह हुआ ही नहीं। हां वो अलग बात है हम इनके मामलात में दखल नहीं देंगे, ये जब मुसलमान होकर हमारे पास आएंगे फिर हम इनमें जुदाई करवा देंगे। तो इमाम साहब भी फरमाते हैं और साहिबैन भी कि इनके मामलात में दखल नहीं दिया जाएगा, हां जब ये मुसलमान होकर आएंगे फिर इनमें जुदाई करवा दी जाएगी, अलबत्ता इस वक्त जबकि अभी ये काफिर हैं, इन्होंने निकाह किया है, क्या ये निकाह सही हुआ या नहीं। इमाम साहब फरमाते हैं इनके मजहब में हो चुका है लिहाजा इनको इनके मजहब पर छोड़ दो, गए यूं समझो निकाह हो चुका है। साहिबैन फरमाते हैं हम दखल तो नहीं दे रहे लेकिन यह निकाह सही नहीं हुआ। भाई फर्क समझ में आया, अब एक मजूसी था उसने अपनी मां से निकाह किया है और फिर वो मुसलमान हो गया, अब बाद में उसको कोई शख्स जो है उसको जानी कहता है, वो मजूसी मुसलमान हो गया है जिसने अपनी महरम से निकाह किया था, अब तो हमने दोनों में जुदाई करवा दी, लेकिन कोई शख्स इसको जानी कहता है मुसलमान होने के बाद, तो क्या उस पर हद कजफ आएगी या नहीं। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि भाई उस शख्स पर हद आएगी, उस शख्स पर हद आएगी, इसलिए क्योंकि इसका निकाह अपने मजहब के मुताबिक सही था और इस्लाम लाने के बाद तो हमने जुदाई करवा दी है, लिहाजा इसकी तरफ से जीना हुआ ही नहीं। जब जीना नहीं हुआ तो इसको जानी कहने वाले को हद जीना लगाई जाएगी। जबकि साहिबान फरमाते हैं कि इसका निकाह हुआ ही नहीं था, महरम के साथ जो वती थी वह हराम, वो जीना था, लिहाजा इस्लाम लाने के बाद भी अगर कोई इसको जानी कहता है तो उस पर हद नहीं आएगी, क्योंकि इसका मुहसन होना खत्म हो चुका है। भाई तो कहते हैं वलौ का दफा मजूसी तजा हुआ जब भी उम्मी ही, और जिस शख्स ने जिना का इल्जाम लगाया ऐसे मजूसी पर, तजा हुआ जब भी उम्मी ही, जिसने निकाह किया था अपनी मां से, सुम्मा असलमा, फिर वो मुसलमान हो गया था, फिर वो मुसलमान हो गया था, उसको उसने जिना की तोहमत लगाई, यो हद दो आइंदा अभी हनी फता रहमला, तो इस इल्जाम लगाने वाले को हद लगाई जाएगी इमाम साहब के नजदीक। वकाला ला हद अलैहि, और साहिबैन फरमाते हैं कि इस इल्जाम लगाने वाले पर कोई हद नहीं है। वहादा बिना उन अला अन तजवुजल मजूसी बिल महारिमी लहू हुक्म सेहति फीमा बैनहु इंदहू, वहादा बिना उन, और इस मसले की बुनियाद इस बात पर है कि अन्नाला अन्न तजवुजल मजूसी ये बिल महारिमी, कि मजूसी का महरमों से निकाह करना, लहू हुक्म सेहति फीमा बैनहुम, उसका सेहत वाला हुक्म है उनके आपस में, आपस में उनके सही होने का हुक्म है, इंदहु इमाम साहिब के नजदीक, खिलाफन लहू मा बखिलाफ साहिबैन, के वो फरमाते हैं उनके मां बहन भी ये निकाह सही नहीं, हां हम दखल नहीं देंगे, लेकिन निकाह हुआ ही नहीं, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं निकाह हो गया उनके नजदीक। वकद मर्रा फिन निकाह, और तहकीक के बाद किताबुन निकाह में गुजर चुकी है। वह इदा दखल अल हरबी यू दार ना भी अमानी, सूरत मसला ये, एक हरबी जो है दारुल इस्लाम के अंदर अमान लेकर आया और फिर यहां इसने किसी मुसलमान पर जिना की तोहमत लगाई, तो क्या इसको हद कजफ लगाई जाएगी या नहीं? तो याद रखो इसके हद कजफ लगाई जाएगी, ये बात पहले भी गुजर चुकी है, इसलिए क्योंकि हरबी ने हुकूकुल इबाद का अपने ऊपर इल्तिजाम किया है और हद कजफ इसमें भी क्या है, बंदे का भी हक है, तो लिहाजा इसको हद लगाई जाएगी। कहते हैं वईदा दखल अल हरबी यू दाराना भी अमानिन, और जब कोई हरबी हमारे दारुल इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ भी अमानिन अमान के साथ, फकदफा मुस्लिमन, फिर इसने किसी मुसलमान पर जिना का इल्जाम लगाया, खुदा, तो इस हरबी को हद लगाई जाएगी, लिया नफी ही हक अल अब्दी, इसलिए क्योंकि हद कजफ के अंदर बंदे का हक है। वकद इल्तजमा ईफा हुकूक अल इबादी, और तहकीक इस हरबी ने इल्तिजाम किया था बंदों के हुकूक की अदायगी का, इसने अपने ऊपर बंदों के हुकूक की अदायगी का इल्तिजाम किया था, यानी जब अमलिकत में आया था तो इसने गोया अपने ऊपर लाजिम कर लिया था कि मैं यहां के बाशिंदों के हुकूक का ख्याल रखूंगा, तो और मेरे भी हुकूक का ख्याल रखा जाए। बात समझ में आ गई। वक़द इल्तज़मा ईफा हुकूक अल इबादी, और उस हरबी ने भी अपने ऊपर बंदों के हुकूक की अदायगी को लाजिम किया है। जब वो ममलिकत इस्लामिया में आया था तो गोया उसने इस बात का इल्तिजाम कर लिया था कि मैं आप लोगों के हुकूक का ख्याल रखूंगा, आप मेरे हुकूक का ख्याल रखना, तो गोया इसने हुकूकुल इबाद को खुद अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। तो कहते हैं वक़द इल्तज़मा ईफा हुकूकुल इबादी, और तहकीक इसने अपने ऊपर लाजिम किया था बंदों के हुकूक की अदायगी को, वली अन्नहु तमाफी अल्लाह युज़ा, और इसलिए क्योंकि इसने उम्मीद की थी इस बात के अंदर कि अल्लाह युज़ा, कि इसको तकलीफ नहीं दी जाएगी, फयकून मुल्तजिमन, तो ये इस बात का इल्तिजाम करने वाला हुआ कि अल्लाह युज़िया, कि यह खुद भी तकलीफ नहीं देगा। व मूजबु अज़ाहुल हद, व मूजबु अज़ाहु, और इसकी जो तकलीफ है उसका जो मुक्तजा है अल हद, वह हद है, मूजब का माना मुक्तजा, व मूजबु अज़ाहुल हद, व मूजबु अज़ाहु, और इसने जो तकलीफ और अजियत दी है उसका मुक्तजा जो है अल हद, वो हद है। भाई आगे देखिए, वइदा हुद्दल मुस्लिमु फी कदफिन सकतत शहादतुहु व इन ताबा, भाई वही बात आ गई जो मैं पहले बयान कर चुका कि हद कजफ जो है इसके अंदर 80 कोड़े भी लगाए जाएंगे और तमाम जिंदगी इस आदमी की शहादत भी अब कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह हद कजफ वाले के बारे में फरमाते हैं फजलिदू हम समानी न जल्दा, कि इनको 80 कोड़े लगाओ, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, और इनकी गवाही कभी भी कबूल ना करो। मालूम हुआ ये जो गवाही कबूल न करना है ये ततिम्मा है हद कजफ का, हद के अंदर 80 कोड़े भी हैं और शहादत का कबूल न करना भी है। तो मालूम हुआ शहादत का कबूल न करना यह बाकायदा हद का हिस्सा है। और 80 कोड़ों के बाद शहादत कबूल न करने का जिक्र है, मालूम हुआ यह हद का ततीमा है। 80 कोड़े लग जाएंगे तो अभी हद पूरी नहीं हुई, हद का ततीमा यह है कि अब आइंदा जिंदगी भर इसकी शहादत कबूल न की जाए। तो अब इस काजिफ की गवाही का कबूल न करना यह हद का ततीमा है, इससे हद पूरी हो रही है। तो कहते हैं वह इदा हुद्दल मुस्लिमु फी कज़्फिन, और जब किसी मुसलमान को हद लगाई गई जिना का इल्जाम लगाने में, सकतत शहादतुहु व इन ताबा, तो इसकी गवाही साकित हो गई अगरचे ये तौबा कर ले, तौबा कर ले फिर भी इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि गवाही का कबूल ना करना यह बाकायदा हद का हिस्सा है। तो यह माना है कि सकतत शहादतुहु व इन ताबा, कि इसकी गवाही साकित हो जाएगी अगरचे ये तौबा कर ले। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह तआला तुकबलु इदा ताबा, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी गवाही कबूल की जाएगी इदा ताबा, जब यह तौबा कर ले। वही तौरफु फी शहादाती, और इस मसले को जाना जाएगा किताबु शहादात में, यानी इस किताबु शहादात में वहां साहिब हिदाया तफसील बयान फरमाते हैं भाई। तो कहते हैं वही तौरफु फी शहादाती, और इस इख्तिलाफी मसले को किताबु शहादात में जाना जाएगा। वईदा खुद्दल काफिरु फी कज़्फिन लम यजुज शहादतुहु अला अहले जिम्मती, मैंने आपको बतलाया था कि किसी मुसलमान के खिलाफ काफिर की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, हां मुसलमान के हक में काफिर गवाही दे तो वह कबूल की जाएगी, क्योंकि उसमें मुसलमान का फायदा है भाई। और हां जिम्मी जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ उनकी गवाही कबूल की जाएगी। तो अब एक जिम्मी है, उसने मुसलमान पर जिना का इल्जाम लगाया था, और आपने पढ़ा है कि हुरुमात के मुखातब ये काफिर भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो जिना का इल्जाम लगाने वाले जिम्मी को हद कजफ लगाई गई। अब ये जो जिम्मी है ये भी अब मरदूदु शहादत हो चुका है, पहले इसकी गवाही जिम्मियों के खिलाफ कबूल की जाती थी, अब जिम्मियों के खिलाफ भी इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वह इदा हुद्दल काफिरु फी कज़्फिन, और जब किसी काफिर पर हद कजफ लगा दी गई, लम यजुज शहादतुहु अला अहले जिम्मती, तो उसकी गवाही जायज नहीं है अला अहले जिम्मती, देखो अला आया, अला आता है नुकसान और जरर के लिए, तो इसकी गवाही जायज नहीं है अला अहले जिम्मती, जिम्मियों के खिलाफ, अब यानी उनके खिलाफ भी इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ले अन्ना लहू शहादत आला जिन्स ही, इसलिए क्योंकि इसकी शहादत थी इसी की जिन्स के खिलाफ, जिम्मी की गवाही जिम्मी के खिलाफ कबूल की जाती थी, लेकिन अब हद जारी हो गई है तो अब कबूल नहीं की जाएगी। यह माना है ले अन्ना लहू शहादत आला जिन्स ही, इसलिए क्योंकि इसको गवाही का हक था अपनी ही जिन्स के खिलाफ। फतुरत दू ततिम मतन लिहद दी ही, तो अब इसकी गवाही रद्द की जाएगी, ततिम मतन लिहद दी ही, इसकी हद के लिए बतौरे ततिम्मा के, अब इसकी गवाही रद्द की जाएगी बतौरे ततिम्मा के इसकी हद के लिए, कि इससे इसकी हद पूरी होगी भाई। फइन असलमा, अगर यह मुसलमान हो गया भाई, यह जिम्मी था, इसको हद कजफ लगाई गई, अब इसकी गवाही जिम्मियों के खिलाफ भी नहीं कबूल की जाती, बाद में यह जिम्मी मुसलमान हो गया, तो क्या अब इसकी गवाही कबूल करेंगे जिम्मियों और मुसलमानों के खिलाफ? कहते हैं जब मुसलमान हो गया तो इस्लाम की वजह से इसको नई शहादत हासिल हो गई, अब यह मुसलमानों के खिलाफ भी गवाही दे सकता है और जिम्मियों के खिलाफ भी गवाही दे सकता है, क्योंकि इस्लाम की वजह से इसको नई शहादत हासिल हो गई। पहले तो ये मुसलमान के खिलाफ गवाही दे ही नहीं सकता था, और फिर जिम्मियों के खिलाफ भी गवाही नहीं दे सकता था हद जारी होने के बाद, लेकिन अब इसको नई शहादत हासिल हुई, ये मुसलमान के खिलाफ गवाही दे सकता है, और इसी गवाही के ताबे भाई इस जिम्मियों के खिलाफ गवाही का भी इसको हक मिल गया, अब दोबारा से इसकी गवाही कबूल की जाएगी। हां अब अगर दोबारा इस पर हद जारी हुई हद कजब, तो फिर दोबारा यह मरदूद शहादत बन जाएगा। कहते हैं फइन असलमा, अगर वो जिम्मी जो है मुसलमान हो गया, कुबिलत शहादतुहु अलैहिम व अलल मुस्लिमीन, तो अब इसकी गवाही कबूल की जाएगी जिम्मियों के खिलाफ भी और मुसलमानों के खिलाफ भी। लिअन्ना हादिही शहादतुन इस्तफादहा बाद अल इस्लामी, इसलिए क्योंकि ये जो शहादत है ये इस्लाम लाने के बाद इसने हासिल की है। फलम तदखुल तहत रद्दी, तो ये उस रद्द के तहत दाखिल नहीं, पहले जो इसकी शहादत रद्द की जाती थी ये अब उसके तहत दाखिल नहीं, क्योंकि मुसलमान होने की वजह से इसने नई शहादत हासिल की है। बिखिलाफिल अब्दी, हां बखिलाफ गुलाम के, सूरत है मसला ये, एक गुलाम ने किसी आदमी पर जिना का इल्जाम लगाया और वह मुहसन था वह आदमी, तो इस गुलाम को हद कजफ लगा दी गई। बाद में इस गुलाम को आका ने आजाद कर दिया, तो क्या आजादी के बाद अब इसकी गवाही कबूल की जाएगी? कहते हैं नहीं, जब गुलाम था तो यह तो शहादत का अहल ही नहीं था, जब शहादत का अहल ही नहीं था तो लिहाजा मालूम हुआ इसको सिर्फ कोड़े लगे थे उस वक्त, गुलामी के दौरान इसको सिर्फ कोड़े लगे थे, और हद का जो ततिमा था यानी मरदूदु शहादत होना वो तो अभी आया ही नहीं
जी।
ये तो अहले शहादत था ही नहीं पहले भाई, सिर्फ इसको कोड़े लगे हैं, और मरदूदु शहादत होना ये तो साबित ही नहीं हुआ था, यानी हद अभी पूरी ही नहीं हुई थी। जब ये आजाद होगा तो अब वो ततिमा आ जाएगा, अब ये मरदूदु शहादत हो जाएगा, पहले सिर्फ कोड़े लगे थे अब मरदूदु शहादत भी हो गया। तो लिहाजा गुलाम को जब हद लगा दी जाए और फिर बाद में वो आजाद हो जाए तो मरदूदु शहादत ही रहेगा, कोई नई शहादत उसको हासिल नहीं हुई भाई। कहते हैं बेखिलाफ इल अब्दी, बेखिलाफ गुलाम के, इदा खुद हद अल कज़्फी, जब उसको हद कजफ लगा दी गई, सुम्मा उतिका, फिर उसको आजाद कर दिया गया, है सुला तुकबलु शहादतुहु, क्योंकि इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बतलाया ना कि जिम्मी मुसलमान हो जाए तो अब उसकी गवाही कबूल की जाएगी, बेखिलाफ इल अब्दी, बेखिलाफ गुलाम के यहां इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, बेखिलाफ इल अब्दी, बखिलाफ गुलाम के, इदा खुद हद अल कज़्फ़ी की, जब उसको हद कजफ लगा दी जाए, सुम्मा उतिका, फिर उसको आजाद कर दिया जाए, हैसु ला तुकबलु शहादतुहु, क्योंकि इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, लिअन्नहु ला शहादत लहु असलन फी हाल रिक, इसलिए क्योंकि गुलामी की हालत में तो इसकी सिरे से कोई गवाही ही नहीं थी, लिअन्नहु ला शहादत लहु असलन, इसलिए क्योंकि इसके लिए तो सिरे से कोई गवाही ही नहीं थी, फी हाल रिक, गुलामी की हालत में, फकान रद्दु शहादत ही बाद इत्क, तो आजादी के बाद इसकी शहादत का रद्द करना, मिन तमाम हद्दी ही, ये इसके हद के पूरा करने में से ही है, हद अभी पूरी हुई ही नहीं थी भाई, तो जब आजाद होगा अब मरदूदु शहादत भी हो गया, अब हद पूरी हो गई भाई। आगे देखिए, फइन ज़ुरिबा सौतन फी क़ज़्फिन सुम्मा अस्लमा, भाई सूरत है मसला ये, एक आदमी है उसको हद कजफ लगाई जा रही है और वो जिम्मी है, एक या दो कोड़े लगे या कुछ कोड़े लगे थे कि ये मुसलमान हो गया, तो कुछ हद जो है कुफर की हालत में लगी और कुछ हद जो है इस्लाम की हालत में लगी, तो क्या अब ये मरदूदु शहादत होगा या नहीं? कहते हैं नहीं भाई, इसकी गवाही कबूल की जाएगी। वजह यह कि मरदूदु शहादत होना यह हद का ततिम्मा है, मरदूदु शहादत होना हद का ततिम्मा है, इससे हद पूरी होती है, लिहाजा पूरी हद या तो कुफर में पाई जाए या इस्लाम में, फिर यह ततिम्मा भी साथ आकर जुड़ेगा, लेकिन पूरी हद तो ना इस्लाम में पाई गई ना कुफर में, कुफर के अंदर एक दो कोड़े लग गए थे फिर मुसलमान हो गया, तो न कुफर में पूरे कोड़े लगे हैं और न इस्लाम में पूरे कोड़े लगे हैं, तो लिहाजा जब पूरी हद होती तो उसका ततिम्मा भी साथ आ जाता, तो जब कोड़े लगाने वाली पूरी हद न कुफर में है न इस्लाम में है तो इसका ततिम्मा भी नहीं आ सकता। कहते हैं फइन ज़ुरिबा सौतन फी क़ज़्फिन, और अगर काफिर को एक कोड़ा लगाया गया कजफ के अंदर, सुम्मा अस्लमा, फिर वो मुसलमान हो गया, सुम्मा ज़ुरिबा मा बकिया, फिर इसको बाकी कोड़े लगाए गए, जाज़त शहादतुहु, तो इसकी शहादत जायज है, ये मरदूदु शहादत नहीं, क्योंकि मरदूदु शहादत होना यह हद का ततिम्मा है, इसे हद पूरी होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वह हद या पूरी की पूरी मौजूद तो हो, या कुफर में पूरी हो या इस्लाम में, लेकिन यहां पूरी हद ना कुफर में है और ना इस्लाम में है, तो यह माना है जाज़त शहादतुहु, इसकी गवाही जायज है, लिअन्न रद्द शहादती मुतम्मिमुन लिलहद, इसलिए क्योंकि शहादत का रद्द करना यह हद को पूरा करने वाला है, फयकूनु सिफतन लहू, तो ये रद्दु शहादत जो है ये हद की सिफत होगी, यानी हद की सिफत है, उसका ततिम्मा है, उसको पूरा करने वाली है, वल मुकामु बादल इस्लामी बाजुल हद्दी, वल मुकामु, और वो जिसको कायम किया गया, और वो हद जिसको कायम किया गया बादल इस्लामी, इस्लाम के बाद, बाजुल हद्दी, वो तो बाज़े हद है, फला यकूनु रद्दु शहादती सिफतन लहू, तो लिहाजा रद्दु शहादत उसकी सिफत नहीं हो सकती, रद्दु शहादत पूरी हद की सिफत बनती है, बाज़ हद की सिफत नहीं बनती। यह माना है फला यकून रद्दु शहादती सिफतन लहू, तो यह रद्द शहादत जो है उस बाज़ हद की सिफत नहीं हो सकती। वान अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से एक रिवायत यह है कि अन्नहु तुरद्दु शहादतुहु, कि इसकी शहादत भी रद्द की जाएगी, ये शख्स भी मर्दूदु शहादत हो जाएगा। कहते हैं इज़िल अकल्लु ताबिउन लिल अक्सरी, इसलिए क्योंकि कलील जो होता है वो अक्सर के ताबिउ होता है, थोड़ी चीज ज्यादा के ताबिउ हो जाती है, और ज्यादा कोड़े तो इस्लाम में लगे हैं, तो यूं समझो गोया इस्लाम के अंदर ही पूरी हद जारी हुई है, लिहाजा रद्द शहादत उसकी सिफत बन जाएगा। तो कहते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अन्नहु तुरद्दु शहादतुहु, इसकी शहादत रद्द की जाएगी। इदिल अक्ल ताबिउन लिल अक्सरी, इसलिए क्योंकि थोड़ा जो है वो अक्सर के ताबिउ हो जाता है। भाई जब इस्लाम के अंदर अक्सर कोड़े लगे हैं तो कुफर के जो थोड़े कोड़े हैं वो भी इसी के ताबिउ हो जाएंगे, और यूं समझेंगे पूरी हद ही इस्लाम के अंदर लगी है। भाई ये माना है इदिल अकल लुताबिउन लिल अक्सरी, इसलिए क्योंकि जो कलील होता है वो अक्सर के ताबे हो जाता है। वल अव्वलु असहु, और पहला कौल ज्यादा सही है कि इसकी शहादत कबूल की जाएगी, मर्दूदु शहादत नहीं है। भाई आगे देखिए काला व मन कजफ औजना औ शरीब गैर मर्रतिन फहुद दफ हुआ लिदालिक कुल्ली ही। भाई यहां से आपको साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि हुदूद के अंदर तदाखुल होगा, हुदूद के अंदर तदाखुल होगा। एक आदमी ने कई आदमियों पर जिना का इल्जाम लगाया है, ये एक ही आदमी पर कई दफा जिना का इल्जाम लगाया है, तो एक ही हद तमाम इल्जामों के लिए काफी हो जाएगी, तो हुदूद के अंदर तदाखुल होगा। लेकिन शर्त यह है वो हुदूद एक ही जिंस की हो फिर ही उनमें तदाखुल होगा, अगर जिंस ही अलग अलग है फिर तदाखुल नहीं होगा। मसलन एक आदमी ने जिना भी किया है, शराब भी पी है, और उसने किसी पर जिना का इल्जाम भी लगाया है, और इसी तरह उसने चोरी भी की है, तो ये तो अलग अलग जिनसे हैं। हद जिना की जिन्स अलग है, हद सरिका की जिन्स अलग है, हद कजफ की जिन्स अलग है, और हद शुरबे खमर की जिन्स अलग है, तो ये सारी अलग अलग जिनसे हैं, इनके मकसद अलग अलग हैं, इनके मकसद अलग अलग हैं। हद जिना का मकसद यह है ताकि नस्बों की हिफाजत हो, लोगों के नस्ब महफूज रहें, इसीलिए जिना की हद लगाई जाती है। तो जिना का मकसद क्या है? नस्ब की हिफाजत। हद कजफ का मकसद क्या है? लोगों की इज्जत की हिफाजत, किसी को जुर्रत ना हो दूसरों पर तोहमतें लगाने की। इसी तरह हद सरिका है, इसका मकसद यह है ताकि लोगों का माल महफूज हो, किसी की जुर्रत ना हो दूसरों का माल चोरी करे। और इसी तरह हद शुरबे खमर, इसका मकसद यह है ताकि लोगों की अकलों की हिफाजत हो, क्योंकि शराब पीने के बाद तो आदमी की अकल जायल हो जाती है। तो हर हद का अलग अलग मकसद है। फिर दोहरा लें, हद जिना का मकसद क्या? नसब की हिफाजत। हद सरिका का मकसद क्या? माल की हिफाजत। हद कजफ का मकसद लोगों की इज्जत की हिफाजत, और हद शुरबे खमर का मकसद क्या? अकल की हिफाजत। भाई तो हर एक का मकसद अलग है, तो इनमें तदाखुल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हां, एक ही आदमी ने कई चोरियां की हैं तो ये एक ही जिंस है, इनमें तदाखुल हो जाएगा, एक ही सजा काफी है। भाई देखिए, भाई काला वमन काजाफा, काला और फरमाते हैं वमन काजाफा औजा ना औ शरीबा गैरा मर्रतिन, मर्रा का माना है एक मर्तबा, गैरा मर्रतिन यानी कई मर्तबा। तो कहते हैं वमन काजाफा, और जिसने जीना का इल्जाम लगाया औ जना या जीना किया, औ शरीबा गैरा मर्रतिन या उसने एक से ज्यादा दफा शराब पी, ये गैरा मर्रतिन का ताल्लुक सबसे है। फिर तर्जमा सुने, काला वमन कजफा औ जना औ शरीबा गैरा मर्रतिन, और जिसने एक से ज्यादा मर्तबा जिना का इल्जाम लगाया औ जना या जिना किया औ शरीबा या शराब पी, फहुद्दा तो उसको हद लगाई जाएगी। भाई तो कहते हैं फहुद्दा तो उसको हद लगाई जाएगी, फहुआ लिदाली का कुल्ली ही, तो ये उस सारे के लिए हो जाएगी, ये एक ही हद उस सारों के लिए हो जाएगी, यानी कई दफा चोरी की है या कई दफा शराब पी है या कई दफा जिना किया है, तो एक ही हद उस सारे के लिए हो जाएगी, यानी हुदूद में तदाखुल हो जाएगा। ये माना है फहुद्दा उसको हद लगाई जाएगी, फहुआ लिदाली का कुल्ली ही, ये एक हद उस सारे के लिए हो जाएगी। अमल आखिरानी, तो आखिर वाली जो दो हदें हैं, देखो यहां मतन में इन्होंने तीन चीजें जिक्र की, कजफ जिना और शुरबे, तो इनमें से आखिरी दो जो हैं यानी जिना और शुरबे खमर, जिना और शुरबे खमर उनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं अमल आखिरानी, जो आखिरी दो हैं यानी जिना और शुरबे खमर, फली अन्नल मकसदा मिन इकामतिल हद हक्कन लिल्लाह तआला इंजिजारु, इंजिजार का माना है रुकना, बाज आ जाना। तो इनका मकसद क्या है? बाज आ जाना, ताकि ये मुजरिम और बाकी लोग उस जुर्म से बाज आ जाएं। तो ये खालिस अल्लाह का हक है, देखो इसमें सब लोगों का फायदा है। तो कहते हैं अमल आखिरानी, जो आखिरी दो हैं यानी जिना और शुरबे खमर, फली अन्नल मकसद मिन इकामतिल हद, तो इनके अंदर हद कायम करने का जो मकसद है, हक्कन लिल्लाह तआला इंजिजारु, वो बाज आना है बतौर अल्लाह के हक के, वो बतौरे अल्लाह के हक के बाज आ जाना है, रुक जाना है। वहतमाल हसूल ही बिल अव्वल कायमुन, और इस मकसद के हासिल होने का एहतमाल मौजूद है पहली हद के जरिए ही। फयतमक्कनु शुबहत फवातिल मकसूद फिस्सानी, तो करार पकड़ लिया मकसद के फौत हो जाने के शुबे ने फिस्सानी दूसरी हद में। देखो भाई, हद जिना और हद शुरब, कई दफा जिना किया है एक ही हद काफी है, कई दफा शुरब किया एक ही हद काफी है, इसी तरह हद कजफ में भी कई दफा तोहमतें लगाई हैं एक ही हद काफी है। अब वजह क्या है, एक हद क्यों काफी है? तो साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि जो जिना है और शुरब खमर हैं, ये खालिस अल्लाह के हक के तौर पर वाजिब हैं, और मकसद ये है ताकि मुजरिम इस जुर्म से बाज आ जाए, आइंदा ये जुर्म न करे, आइंदा ये जुर्म न करे। तो जब ये जो जिना करने वाला है, ये जो शराब पीने वाला है, जब इसको एक दफा हद लगा दी गई, जुर्म तो कई दफा किया है लेकिन जब एक दफा हद लगा दी गई, तो यहां एहतमाल आया हो सकता है इसी से इस मुजरिम को इबरत हो जाए, अब ये आइंदा न करे जी। तो एक ही दफा हद लगाने से मकसद हासिल होने का एहतमाल आ गया। मकसद क्या था? ताकि इस जुर्म से बाज आ जाए। तो एक दफे हद लगाई तो एहतमाल आया कि हो सकता है मकसद हासिल हो गया हो, इसको इबरत हासिल हो गई हो, अब आइंदा जिंदगी भर ये ऐसा न करे। तो पहली ही हद से मकसद हासिल होने का एहतमाल आ गया, तो इसका तो मतलब है अगर आप दूसरी हद लगाएंगे वो तो बेमकसद हो जाएगी, तो लिहाजा दूसरी हद के बेमकसद होने का शुबा आ गया, मकसद से खाली होने का शुबा आ गया, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है, तो इसलिए बाकी हदें साकित हो जाएंगी। इसी तरह शराब इसने कई दफा पी है लेकिन एक ही हद लगा देंगे तो इहतमाल आ गया, हो सकता है यही इसकी इबरत के लिए काफी हो, अब ये बाज आ जाएगा। तो अगली हद अगर आप लगाएंगे तो उसके अंदर तो शुबा आ गया कि उसमें तो मकसद हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि मकसद तो पहले ही हासिल हो चुका है। तो जब मकसद से खाली होने का शुबा आया तो अगली हुदूद साकित तो हो जाएंगी भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं अमल आखिरानी, जो आखिर वाली दो चीजें हैं यानी जीना और शुरबे खमर, फली अन्नल मकसद मिन इकामतिल हद, इसलिए क्योंकि हद कायम करने का जो मकसद है, हक्कन लिल्लाह तआला इंजिजारु, वो बतौर अल्लाह के हक के इस मुजरिम का बाज आना है। वहतमाल हसूल ही बिल अव्वल कायमुन, और इस मकसद के हासिल होने का एहतमाल तो मौजूद है पहली हद के जरिए ही, पहली हद के जरिए इस मकसद के हासिल होने का एहतमाल मौजूद है। फयतमक्कनु शुबहतुल फवातिल मकसूदी, तो मकसद के फौत होने का शुबा आ गया फिसानी दूसरी हद के अंदर, तो लिहाजा दूसरी हद क्या हो जाएगी? साकित हो जाएगी। वहां दा बिखिलाफी मा इदा जना व कजफा व सरिका, देखो यहां से अब साहिब हिदाया वही बात बयान कर रहे हैं कि यह तदाखुल आएगा एक जिन्स के अंदर, जब सारी हदें क्या हों, एक ही जिन्स की हो तो फिर उनमें तदाखुल होगा, लेकिन अगर जिनसे अलग अलग हैं फिर तदाखुल नहीं। जैसे चोरी की भी है और जिना भी किया है, तो चोरी की हद का मकसद क्या है? लोगों के माल महफूज हो जाए, और जिना की हद का मकसद क्या है? नसब महफूज हो जाए, तो दोनों का मकसद अलग अलग है तो फिर इनमें तदाखुल नहीं होगा। तो कहते हैं वहादा बिखिलाफ इमा इदा जना व कजफा व सरका व शरीबा, और बखिलाफ इसके कि जब उस शख्स ने जिना भी किया और जिना का इल्जाम भी लगाया और चोरी भी की और शराब भी पी, तो इस सूरत में तदाखुल नहीं होगा। लिअन्न अल मकसूद मिन कुल्ली जिन्सिन, इसलिए क्योंकि हर जिन्स से जो चीज मकसूद है, गैरुल मकसूद मिनल आखरी, वो दूसरी जिन्स से मकसूद नहीं है। इसलिए क्योंकि हर जिंस से जो मकसूद है वो दूसरी जिंस से मकसूद नहीं है, तो हर एक का मकसद अलहदा है। तो कहते हैं लिअन अल मकसूद मिन कुल्ली जिंसिन, कहते हैं इसलिए क्योंकि हर जिंस से जो मकसूद है गैरुल मकसूद मिन अल आखरी वो दूसरी जिंस से मकसूद नहीं है, फला यतदाखलु तो इनमें तदाखुल नहीं होगा। वह अमल का सुफल मुगल्लबु फीहि इंदना हक़ुल्लाहि तआला, और बाकी हद कज़फ जो है फल मुगल्लबु फीहि इंदना तो वो चीज जिसको गालिब करार दिया गया है इसके अंदर हमारे नजदीक हक़ुल्लाहि वो अल्लाह का हक है, फयकून मुल्हकम बिहिमा तो ये भी उन दोनों के साथ मुल्हक होगी। हद्दे कज़फ का हुक्म भी वही हद्दे ज़िना और हद्दे शुर्बे खमर वाला है और उनमें तो तदाखुल होता है, तो लिहाजा हद कज़फ जिसके अंदर हकुल्ला गालिब है उसके अंदर भी तदाखुल होगा भाई। वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं इन इख्तलफल मकजूफ अविल मकजूफ बिही व हुवा ज़िना ला यतदाखलु। इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं हद कज़फ के अंदर तदाखुल तब होगा जब एक मकजूफ भी एक हो और मकजूफ बिही भी एक हो। मकजूफ वो आदमी जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया है, मसलन एक आदमी ने जैद पर जिना का इल्जाम लगाया तो जैद हुआ मकजूफ, इस पर जिना का इल्जाम लगा है, और जिस चीज का इल्जाम लगाया वो है मकजूफ भी ही, तो जैद पर किस चीज का इल्जाम लगाया जिना का, तो जिना हुआ मकजूफ भी ही। तो इमाम शाफिर हमला फरमाते हैं अगर मकजूफ और मकजूफ भी ही मुतहिद हों तो फिर हद कजफ में तदाखुल होगा। एक ही जिना का इल्जाम एक आदमी पर कई दफा लगाया, मसलन जैद पर इल्जाम लगाया कि तुमने फुलानी औरत से जिना किया है, और फिर दूसरे दिन फिर इल्जाम लगाया उसी औरत के साथ जिना का कि तुमने फुलानी औरत से जिना किया है। तो देखो यहां मकजूफ जैद है दोनों जगह, और एक ही जिना की वो बात कर रहा है, कोई अलग अलग जिना की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर मकजूफ अलग अलग हो, मसलन एक जिना का इल्जाम लगाया है जैद पर, एक जिना का इल्जाम लगाया है अमर पर, और एक जिना का इल्जाम लगाया है बकर पर, तो यहां मकजूफ अलग अलग हैं लिहाजा यहां तदाखुल नहीं होगा। ये कौन फरमाते हैं? इमाम शाफई रहमहुल्ला। या इसी तरह मकजूफ तो एक है लेकिन मकजूफ भी ही अलग अलग हैं फिर भी तदाखुल नहीं होगा। मसलन जैद पर एक इल्जाम लगाया कि तुमने फुलानी औरत से जिना किया है, फिर दूसरी औरत का इल्जाम लगाया कि तुमने फुलानी औरत से भी जिना किया है, फिर तीसरी औरत का इल्जाम लगाया कि तुमने फुलानी औरत से जिना किया है, तो यहां देखो मकजूफ भी ही अलग अलग हैं, यानी अलग अलग जिना का इल्जाम लगा रहा है, तो इनमें भी तदाखुल नहीं होगा। हर इल्जाम के लिए अलग अलग हद लगाई जाएगी, ये इमाम शाफई रहमुल्ला फरमाते हैं, जबकि हमारे नजदीक तदाखुल हो जाएगा। एक है हद इन सब से काफी है भाई। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं इन इख्तलफ अल मकजूफ अविल मकजूफ भी ही, कि अगर मकजूफ या मकजूफ भी ही मुख्तलिफ हो जाएं, वह हुआ जिना। ये तफसीर कर रहे हैं मकजूफ भी ही की। मकजूफ भी ही क्या है? कहते हैं वह हुआ जिना, और वो जिना है यानी वो जो इल्जाम लगाया है। तो इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं इन इख्तलफ अल मकजूफ, अगर मकजूफ मुख्तलिफ हो जाए यानी वो शख्स जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया है, अविल मकजूफ भी ही या मकजूफ भी ही मुख्तलिफ हो जाए, वह हुआ जिना और वो जिना है, अगर वो मुख्तलिफ हो जाए ला यतदाखलु फिर हद कजफ के अंदर तदाखुल नहीं होगा। लिअन अल मुगल्लब फीहि हक़ुल अब्द इंदहु, इसलिए क्योंकि इस हद कजफ के अंदर बंदे के हक को गालिब करार दिया गया है, इंदहु उनके नजदीक, इमाम शाफी रहमहुल्ला के नजदीक इसमें हद कज़फ में बंदे का हक गालिब है भाई। आगे देखिए भाई फसलुन फी ताजीर, ये फसल है ताजीर के बारे में भाई। ताजीर भाई आजारा या आजीरू से है, और आजारा या आजीरू के माने भी हैं रोकना और सजा देना। तो ताजीर को भी ताजीर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी मुजरिम को और लोगों को जुर्म से रोकती है भाई। जैसे किताबुल हुदूद के शुरू में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि हद का माना है रोकना, और हद को भी हद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों को जुर्म से रोकती है भाई। तो कहते हैं फसलुन फी ताजीर, ये फसल है ताजीर के बयान में। मैंने आपको बतलाया था भाई कि इस्लामी सजाएं दो किस्म पर हैं, कुछ को हुदूद कहते हैं और कुछ को ताजीर। हुदूद वो सजाएं हैं जो मिन जानिबिल्लाह मुकर्रर हैं और काजी के लिए जायज नहीं उसमें कमी बेशी करे, न उसमें सफारिश की जा सकती है और नीज वो शुबे की वजह से भी साकित हो जाती है। जबकि ताजीर जो है वो सजा है जो काजी अपनी मर्जी से देता है भाई, और ये शुबे की वजह से साकित नहीं होती भाई, और इसके अंदर सफारिश भी की जा सकती है। और यह कितनी सजा देनी है यह काजी की राय पर है। एक ही चीज की सजा एक शख्स को कम दे और दूसरे को ज्यादा दे, काजी ऐसा भी कर सकता है मौका महल के मुताबिक भाई। जैसे जिक्र किया जाता है कि एक बादशाह के पास एक जुर्म के अंदर एक आदमी को लाया गया, तो बादशाह ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर कहा इसको ले जाओ, छोड़ दिया उसको। और फिर एक और शख्स को लाया गया बादशाह के पास, उसने भी वैसा ही जुर्म किया था, तो बादशाह ने उसको कुछ डांटा और फिर उसको भी भेज दिया। फिर उसके बाद एक और उसी जुर्म के अंदर एक तीसरे आदमी को लाया गया, तो बादशाह ने कहा कि इसका मुंह काला करवाकर गधे पर बिठाओ और इसको शहर के 10 चक्कर लगवाओ। तो बाद में दरबारी पूछने लगे कि बादशाह सलामत एक ही जुर्म था, एक को आपने सिर्फ गुस्से से देखा, गुस्से का एक लफ्ज भी उससे नहीं कहा, उसे जरा भी नहीं डांटा, दूसरे को आपने डांटा और तीसरे को आपने सजा भी दे दी। तो बादशाह कहने लगा लोगों के अहवाल मुख्तलिफ होते हैं, तुम जाकर जरा पता तो करो इन आदमियों का। तो बादशाह के वजीर वगैरह जो थे उन्होंने बाद में उन लोगों का पता किया, तो वो शख्स जिसे बादशाह ने गुस्से से देखा था उसका बादशाह से कुछ ताल्लुक भी था, तो देखा वो गम के अंदर रो रहा है और आंसू बहा रहा है, घर के अंदर एक कोने में बैठा हुआ है, न खाना खा रहा है न किसी से बात कर रहा है, इंतहाई गम में डूबा हुआ है कि मेरी शिकायत कैसे बादशाह तक पहुंच गई। और फिर दूसरे आदमी का पता किया वजीरों ने जिसको बादशाह ने डांटा था, तो देखा वो भी एक घर के अंदर एक कोने में खामोश बैठा है, अफसुरदा बैठा है कि मेरी शिकायत बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने मुझे डांट दिया। और तीसरे के बारे में पता किया तो देखा तो उसका मुंह काला किया हुआ है और उसको गधे पर बिठाकर चक्कर लगवा रहे हैं और खूब सारे बच्चे उसके पीछे तालियां बजाते हुए और हंसते हुए और नारे लगाते हुए चल रहे हैं। और वो शख्स जब अपने घर के करीब से गुजरा तो घर वालों को आवाज देकर कहने लगा फिक्र ना करो, 2 चक्कर रह गए, मैं अभी आने वाला हूं। तो वो हैरान रह गए बादशाह की दानिशमंदी और अकल पर। तो मालूम हुआ कि हुकूमत चलाना भी कोई आसान काम नहीं है भाई, उसमें बे इंतहा हिकमत की जरूरत होती है। तो लिहाजा एक ही जुर्म के सिलसिले में काजी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दे सकता है भाई। और इसी तरह याद रखो ताजीर जो है वो हद से कम होनी चाहिए, चुनाचे ज्यादा से ज्यादा जो ताजीर के तौर पर सजा दी जा सकती है वो तरफैन रहमहुमल्लाह के नजदीक 39 कोड़े है, क्योंकि कम से कम हद जो है वो 40 कोड़े हैं गुलाम के। गुलाम की सजा निसफ होती है, गुलाम शराब पी ले या गुलाम किसी पर तोहमत लगा दे जीना की तो गुलाम को 40 कोड़े लगाए जाते हैं। और ताजीर जो है वो हद से कम होनी चाहिए, तो तरफैन फरमाते हैं कि ताजीर ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़ों तक हो सकती है। जबकि आगे आपको बतलाएंगे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ताजीर जो है ज्यादा से ज्यादा 75 कोड़ों तक हो सकती है। उन्होंने आजाद की हद का एतबार किया है और आजाद की हद तो 80 कोड़े है, तो उससे कुछ कम कर दिए तो फरमाते हैं 75 कोड़े हैं। जबकि एक रिवायत उनकी यह भी है कि 80 से एक कोड़ा कम कर दिया जाए यानी 79 कोड़े, ये भी काजी हद के तौर पर दे सकता है। लेकिन बहरहाल याद रखो ताजीर के सिलसिले में सारा दारोमदार काजी की राय पर है भाई। काजी जितनी ताजीर किसी को देना चाहे दे सकता है, अलबत्ता वो हद से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर बाज औकात मामूली सजाओं से लोगों की इस्लाह नहीं हो रही तो फिर काजी याद रखो 2-4 आदमियों को कत्ल भी करवा सकता है। मसलन एक इलाके के अंदर लोग बहुत ज्यादा मिलावट करते हैं, उनको मामूली सजा से असर ही नहीं पड़ता, 30-35 कोड़े लग जाएं तो इससे उनको असर ही नहीं होता, तो काजी के लिए जायज है कि बतौर ताजीर के 3-4 को कत्ल करवा दे, उनको लटका दे। जैसे मसलन देखो लाहौर वाले हैं अब मिलावट से बाज नहीं आ रहे, तो काजी के लिए जायज है 2-3 को कत्ल करवा दे, एक को लाहौर के एक कोने में लटका दे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे कोने में। आप देखेंगे एक दिन में सारे लोग मिलावट से बाज आ जाएंगे। तो उलमा फुकाहा फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात जरूरत की वजह से काजी सजाए मौत भी दे सकता है लोगों की इसलाह की नीयत से। भाई तो अब यह ताजीर का बयान आ गया। कहते हैं फसल फित ताजीरी, यह फसल है ताजीर के बयान में। वह मन का दफा अबदन जी। अब सूरत यह भाई पीछे आपको इन्होंने बतलाया था अगर मोहसन पर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो उस पर तो हद कजफ आती है, अगर गैर मोहसन पर कोई जिना का इल्जाम लगाए जैसे गुलाम है या काफिर है इन पर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो कहते हैं इस सूरत में ताजीर आएगी, इस सूरत में ताजीर आएगी और सख्त ताजीर इनको लगाई जाएगी क्योंकि गैर मोहसन होने की वजह से हद तो ना आई लेकिन बहरहाल ताजीर आएगी और ताजीर भी सख्त दर्जे की। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं वह मन कज़फ़ा अब्दन, और जिसने इल्जाम लगाया गुलाम पर औ अमतन या बांदी पर औ उम्म वलदिन या किसी की उम्मे वलद बांदी पर औ काफिरन या काफिर पर बेज़िना जिना का, इनमें से किसी पर किसी ने जिना का इल्जाम लगाया। अब ये तो गैर मोहसन है तो कहते हैं उस जीरा तो उसको ताजीर लगाई जाएगी। लिअन्नहु जिनायतु क़ज़्फ़िन, इसलिए क्योंकि ये जिना का इल्जाम लगाने का जुर्म है। वह कदीम तना वजूबुल हद्दी, और हद का वजूब तो मुमतने हो गया, हद तो वाजिब नहीं हो सकती। लिफ़क़दिल इहसानी, मोहसन न होने की वजह से। फकद का क्या माना? न होना। लिफकदिल एहसानी, मोहसन न होने की वजह से। फवजब ताजीर, तो ताजीर वाजिब होगी। वकदा इदा कदफा मुस्लिमन बिगैर जिना, अब भाई दूसरी सूरत आ गई, मोहसन पर इल्जाम लगाया लेकिन जिना के अलावा किसी और चीज का। जिना का इल्जाम मोहसन पर लगाया जाए वहां तो हद कजफ आती है, लेकिन जिना के अलावा कोई और इल्जाम लगाया है तो फिर वहां ताजीर आएगी। तो कहते हैं वकदा इदा कदफा मुस्लिमन बिगैर जिना, और इसी तरह है जब इल्जाम लगाया मुसलमान पर गैर जिना का। फकाला, तो उसने मुसलमान से कहा उस इल्जाम लगाने वाले ने, या फासिकु, ए फासिक भाई। मैंने बताया फासिक किसे कहते हैं, जो शख्स अल्लाह के अहकाम की परवाह नहीं करता उसको फासिक कहते हैं। तो कहने लगा या फासिकु औ या काफिरु, किसी ने मुसलमान से कहा ए काफिर, औ या खबीस, मुसलमान से किसने कहा ए खबीस। खबीस जो है कमीना बदतीनत शख्स जो है, या यूं कहो हर खराब चीज को जो है खबीस कहा जाता है। तो किसी ने मुसलमान से कहा या खबीस औ या सारिकु, ए चोर। तो ये देखो ये सब इल्जामात हैं, इस सूरत में ताजीर आएगी, काजी सजा देगा उस आदमी को। तो कहते हैं इन सूरतों में ताजीर आएगी। लिअन्नहु आज़ाहु, इसलिए क्योंकि तोहमत लगाने वाले ने उस मुसलमान को तकलीफ दी है। व अलहक़ शैन बिही, शैन भाई, शैन कहते हैं ऐब को। व अलहक़ शैन बिही, और इस तोहमत लगाने वाले ने मुसलमान के साथ ऐब को मिलाया है कि उसे चोर या काफिर वगैरह कहा है, तो इसको ताजीर की जाएगी। वला मदखल लिल कियास फिल हुदूद, यह बात पहले बयान हो चुकी है कि हुदूद जो है वो अदना शुबे से भी साकित हो जाती हैं, लिहाजा कियास के जरिए हुदूद साबित नहीं हो सकती। लिहाजा मुसलमान को चोर कहा है या काफिर या खबीस वगैरह कहा है, कियास के जरिए यहां आप हद साबित नहीं कर सकते। जब हद साबित नहीं कर सकते तो तकलीफ तो दी है मुसलमान को, तो फिर इस सूरत में यहां ताजीर आएगी। तो यह माना है वला मदखल लिल कियास फिल हुदूदी, और कियास का कोई दखल नहीं है हुदूद के अंदर। मदखल ये याद रखना, ये मस्दर है भाई, अई वला दखल लिल कियास फिल हुदूदी। तो कहते हैं कियास का कोई दखल नहीं है हुदूद में। फवजब ताजीर, तो ताजीर वाजिब हुई। इल्ला अन्नहु यबलुगु बिताजीर गायतहु फिल जिनायतिल उला, हां कहते हैं फर्क यह है कि दो चीजें यहां बयान हुई, एक है काफिर या गुलाम को जानी कहा और एक है मुसलमान को फासिक या चोर या काफिर वगैरह कहा। दोनों में फर्क है, पहले के अंदर जो उसने जिना का इल्जाम लगाया है वो बड़ा जुर्म है, तो हद तो नहीं आई क्योंकि वो शख्स गैर मोहसन है, गुलाम है या काफिर है, लेकिन ताजीर सख्त दर्जे की आएगी, ताजीर सख्त दर्जे की आएगी। और दूसरी सूरत में मुसलमान पर को फासिक या काफिर वगैरह कहा है, यह भी जुर्म है लेकिन यह बड़े दर्जे का नहीं है, लिहाजा इसमें जरा कम दर्जे की ताजीर आएगी। बात समझ में आ गई। तो यह इबारत पर नजर रखिए जरा, इल्ला अन्नहु यबलुगु बिताजीरी, बलगा यबलुगु, इसके अंदर जमीर जो है वो काजी या इमाम की तरफ लौटा दें, इसलिए क्योंकि ताजीर का जिक्र चल रहा है और ताजीर जो है वो काजी और इमाम करता है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु यबलुगु बिताजीर गायतहु फिल जिनायतिल उला, मगर यह कि काजी या इमाम ताजीर के जरिए ताजीर की इंतहा को पहुंचेगा पहले जुर्म में, यानी खूब सख्त ताजीर करेगा। लिअन्नहु मिन जिन्स मा यजिबु बिहिल हद, इसलिए क्योंकि यह भी उसी की जिन्स है जिसकी वजह से हद वाजिब होती है। भाई अगर यही जुर्म मुहसन के खिलाफ किया जाए, यानी उस पर जिना का इल्जाम लगाया जाए, तो इसी में हद भी वाजिब होती है। तो इल्ला अन्नहु यबलुगु, चाहे तो आप इसको मुजर्रद से पढ़ लें, यानी सुलासी मुजर्रद से, और फेल मारूफ पढ़ें और जमीर लौटा दें काजी या इमाम की तरफ, और अगर आप चाहें तो इसको फेले मजहूल पढ़ लें बाबे तफईल से। इल्ला अन्नहु युबल्लगु बिताजीर गायतहु फिल जिनायतिल उला, मगर यह कि पहले जुर्म के अंदर ताजीर के जरिए उसकी इंतहा को पहुंचा जाएगा। इल्ला अन्नहु युबल्लगु बिताजीर के ताजीर के जरिए पहुंचा जाएगा, गायतहु ताजीर की इंतहा को, फिल जिनायतिल उला पहले जुर्म में। बात समझ में आ गई, तो दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं भाई, मुजर्रद से फेले मारूफ भी पढ़ सकते हैं और बाबे तफईल से फेले मजहूल भी पढ़ सकते हैं भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु यबलुगु बिताजीर गायतहु फिल जिनायतिल उला, मगर यह कि काजी जो है ताजीर के अंदर इंतहा को पहुंचेगा, फिल जिनायतिल उला पहले जिनायत में, पहली जिनायत में यह ताजीर के अंदर इंतहा को पहुंचेगा, यानी काजी सख्त किस्म की ताजीर उसे करेगा। लिअन्नहु मिन जिन्सि मा यजिबु बिहिल हद, इसलिए क्योंकि यह इल्जाम भी उसी की जिन्स से है जिसकी वजह से हद वाजिब होती थी। मोहसन पर यही जिना का इल्जाम लगाता था तो हद होती थी, तो यहां भी जिना ही का इल्जाम है तो हद तो नहीं आएगी लेकिन सख्त सजा आएगी। तो कहते हैं लिअन्नहु मिन जिन्सि मा यजिबु बिहिल हद, इसलिए क्योंकि जिना का इल्जाम यह भी उसी जिन्स से है जिसकी वजह से हद वाजिब होती थी। वफिल वजह सानिया थी, और दूसरी सूरत में जब मुसलमान को फासिक या काफिर वगैरह कहा है तो उस सूरत में अर्रायु इलल इमामी, राय जो है इमाम के सुपुर्द है, इमाम की जो राय बने उसके मुताबिक सजा दे। वलव काला याखी मारू औ याखी इंजीरु लम युअज़्ज़र, सूरत ये एक आदमी ने मुसलमान को या खिमार या खिंजीर कहा, या खिमारू ए खिमार यानी ए गधे या खिंजीर, तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? तो मतन में बतला रहे हैं सूरत में ताजीर नहीं आएगी, इसलिए यहां उसने कोई ऐब उस पर नहीं लगाया। पिछले मसले में तो था मुसलमान को कहा है या सारिक ए चोर, तो गोया चोरी का इल्जाम लगा दिया उस पर, या काफिर गोया कुफर का इल्जाम लगा दिया उस पर, या इसी तरह या फासिक तो उस पर फिसक का इल्जाम लगा दिया। लेकिन यहां जो इसने कहा है या हिमारू ए गधे, ये तो कोई इल्जाम नहीं है, सबको पता है ये आदमी गधा नहीं है, दूसरा वैसे इसको गधा कह रहा है, या खिंजीर कहा, तो इस सूरत में भी ताजीर नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई ऐब उसके साथ लाहिक नहीं किया। भाई कहते हैं वलव काला, और अगर इल्जाम लगाने वाले ने कहा या हिमारू ए गदे औ या खिंजीरु ए खिंजीर लम युअज़्ज़र, तो उसको ताजीर नहीं की जाएगी। लिअन्नहु मा अलहक़ शैन बिही, इसलिए क्योंकि इसने उसके साथ कोई ऐब नहीं लगाया। लितयक्कुनि बिनफ़यिही, इसलिए क्योंकि इनकी नफी यकीनी है, यकीनी तौर पर ना वो हिमार है और ना खिंजीर है, तो कोई ऐब नहीं लगाया। वकीला, और कहा गया है, बस फुकहा फरमाते हैं फी उर्फी ना युअज़्ज़रु, हमारे उर्फ में सजा दी जाएगी, कोई किसी को हिमार या खिंजीर कहे तो सजा दी जाएगी। क्यों? कहते हैं लिअन्नहु युअद्दु सब्बन, इसलिए क्योंकि इसको गाली शुमार किया जाता है तो काजी सजा देगा। वकीला, और कहा गया है इन कानल मसबूब मिनल अशराफी कल फुकहा इवल अलवियत युअज़्ज़रु लिअन्नहु यलहकुहुमुल वहशतु बिज़ालिक, बस फुकहा फरमाते हैं कि वो शख्स जिसको गाली दी गई है, जिसको हिमार या खिंजीर वगैरह कहा गया है, अगर वो कोई वो मुअज्जज आदमी है, बड़े खानदान वाला है या बड़ा आदमी है, आलिम वगैरह है, तो फिर इस सूरत में काजी ताजीर करेगा, और अगर आम आदमी है तो फिर काजी ताजीर नहीं करेगा, क्योंकि आम आदमी तो एक दूसरे को गालियां निकालते रहते हैं, उनको परवाह भी नहीं होती। भाई तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है इन कानल मसबूब मिनल अशराफी, मसबूब जिसको गाली दी गई है। सबुन किसे कहते हैं? गाली को। मसबूब जिसको गाली दी गई। तो कहते हैं वकील, और कहा गया है इन कानल मसबूब मिनल अशराफी, कि अगर वो शख्स जिसको गाली दी गई है अगर वो मुअज्जज लोगों में से है, कल फुकहा, जैसे कि फुकहा और उलमा हैं, वल अलवियति, और जैसे कि अलवी हैं, अलवी यानी हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान वाले भाई, या जैसे कि अलवी हैं, युअज़्ज़रु, तो उसको ताजीर की जाएगी। बात समझ में आ गई। फिर तर्जमा देख लें, वकील और कहा गया है इन कानल मसबूब मिनल अशराफी, कि अगर वो जो शख्स जिसको गाली दी गई है मिनल अशराफी, वो मुअज्जज लोगों में से था, कल फुकहा इवल अलवियती, जैसे कि फुकहा हैं और अलवी हैं, युअज़्ज़रु, तो फिर गाली देने वाले को ताजीर की जाएगी। लिअन्नहु यलहकुहुमुल वहशतु बिज़ालिका, इसलिए क्योंकि इन मुअज्जज लोगों को वहशत होती है इससे, इनको इस गाली से वहशत होगी। वहशत होगी, वहशत का माना है गम और तकलीफ भाई, उनको वहशत लाहिक होगी भाई, यानी उनको गम और तकलीफ होगी। वह इन कान मिनल आमती, और अगर वो मसबूब जो है वो आम लोगों में से था, ला युअज़्ज़रु, फिर ताजीर नहीं की जाएगी। वहादा अहसन, और ये अच्छी तफसील है। साहिब हिदायत फरमा रहे हैं ये ज्यादा अच्छी तफसील है। आगे देखिए, वह ताजीर अक्सरहु तिसअतुन व सलासून सौतन, और ताजीर जो है ज्यादा से ज्यादा वो 39 कोड़े हैं, एक कम 40 कोड़े। वह अकल्लुहु सलासु जल्दातिन, और कम से कम ताजीर जो है वो 3 कोड़े हैं। वह काल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं यब लुगु ताजीर 75 सौता, कि ताजीर पहुंचेगी 75 कोड़ों तक। ताजीर 75 कोड़ों तक दी जा सकती है। काजी किसी को सजा के तौर पर 75 कोड़े भी लगा सकता है ताजीर के अंदर। वल असलु फीहि कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और असल इसके अंदर कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम का कौल है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मन बलगा हद्दन फी गैर हद्दिन, जो शख्स हद को पहुंच गया गैर हद में, फहुआ मिनल मुअतदीन, तो वह हद से तजावुज करने वालों से है। यानी जो काजी या बादशाह जो है गैर हद में, हद तक पहुंच गया, यानी मकाम था गैर हद का, और सजा इसने हद जितनी दे दी, तो ये हद से तजावुज करने वालों में से है भाई। यानी ये काजी और हाकिम हुदूद शरीयत से तजावुज कर रहा है भाई। भाई हदीस में आया मन बलगा हद्दन फी गैर हद्दिन फहुआ मिनल मुअतदीना, जो हद के अंदर गैर हद तक पहुंच गया तो वह हद से तजावुज करने वालों में से है। यानी वो काजी और हाकिम जो गैर हद के अंदर हद जैसी सख्त सजा दे, तो वो हुदूद शरीयत से तजावुज करने वाला है, यानी वो खिलाफ शरीयत काम कर रहा है भाई। बात समझ में आ गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन बलगा हद्दन फी गैर हद्दिन, जो शख्स हद तक पहुंच गया गैर हद के अंदर, फहुआ मिनल मुअतदीन, तो वो शख्स हद से तजावुज करने वालों में से है। वह इदा ताअज़्ज़रा तबलीगुहु हद्दन, और जब मुताअज़्ज़िर है इस ताजीर का पहुंचाना हद तक। मालूम हुआ ताजीर को हद तक नहीं होना चाहिए, उसे कम होना चाहिए। तो तरफैन फरमाते हैं 39 कोड़े होंगे, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं 75 कोड़े होंगे। अब वही तफसील बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह इदा ताअज़्ज़रा तबलीगुहु हद्दन, और जब ताजीर को हद तक पहुंचाना मुताअज़्ज़िर है तो मुमकिन नहीं है। फ अबू हनीफा व मुहम्मद रहिमहुमल्लाह तआला, तो तरफैन रहिमहुमल्लाह ने नजारा इला अदनल हद्दी, तो उन्होंने नजर की कम से कम हद की तरफ। वह हद्दुल अब्द फिल कज़्फी, और वह गुलाम की हद है कज़्फ के अंदर। फसारफाहु इलैही, तो उन्होंने इस ताजीर को फेर दिया उसकी तरफ, तो उन्होंने ताजीर को फेर दिया इलैही, उस कम से कम हद की तरफ भाई, कि वो 40 कोड़ों से कम होनी चाहिए ताजीर। वज़ालिका अरबाउना, और वो हद तो 40 कोड़े हैं, वो जो गुलाम की हद है। फन्ना कसा मिनहु सौतन, तो तरफैन ने इसमें से एक कोड़ा कम कर दिया। व अबू यूसुफ रहमुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्ला जो हैं, इअतबारा अकल्लल हद फिल अहरारी, उन्होंने कम से कम हद का एतबार किया आजाद लोगों में। इदिल असलु हुवल हुर्रियतु, इसलिए क्योंकि असल जो है वो आजादी है। इंसानों में असल आजादी है, गुलामी उस पर आरिज होती है किसी वजह से। तो कहते हैं आजाद की हद का एतबार किया, इदिल असल हुवल हुर्रियतु, इसलिए क्योंकि असल जो है वो आजादी है। सुम्मा नकसा सौतन फी रिवायतिन अनहु, फिर एक कोड़ा उन्होंने कम कर दिया एक रिवायत जो उनसे की गई है, वो एक रिवायत जो उनसे की गई है उसके मुताबिक उन्होंने 80 से एक कोड़ा कम कर दिया, यानी 79 कोड़े। वह हुआ कौल जुफर रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम जुफर रहमहुल्ला का भी। वह हुआ القياس, और यही कियास भी है। वफी हादिही रिवायत नकस खमसतन, और इस रिवायत के अंदर जो ऊपर गुजरी इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला का ऊपर कौल गुजरा ना कि यबलुगु ताजीर 75 सौता, तो कहते हैं वफी हादिही रिवायत नकस खमसतन, और इस रिवायत के अंदर इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला ने 5 कोड़े कम फरमाए। वह हुआ मासूर अन अली रजी अल्लाह ताला अनहु, और यही मनकूल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु से। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु से ताजीर के 75 कोड़ों तक पहुंचने की रिवायत मनकूल है भाई। तो कहते हैं वह हुआ मासूर अन अली रजी अल्लाह ताला अनहु, और यही 75 कोड़े जो हैं ये मनकूल हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु से। फकल्लदहु, तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु की तकलीद की, और क्या फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा ताजीर 75 कोड़ों तक हो सकती है भाई। आगे देखिए, कहते हैं सुम मकद्दर अल अदना फिल किताब भी 37 जल्दातिन, कहते हैं फिर किताब के अंदर यानी मतन के अंदर, मतन यानी कुदूरी के अंदर कम से कम ताजीर 3 कोड़े जिक्र किए गए हैं जी। ताजीर के अंदर कम से कम 3 कोड़े जिक्र किए गए हैं भाई। कहते हैं इसलिए क्योंकि 3 से कम कोड़े होंगे तो दूसरे को जजर नहीं होगा, 3 से कम होंगे तो फायदा कोई नहीं होगा। तो कहते हैं सुम मकद्दर अल अदना फिल किताबी भी 37 जल्दातिन, और फिर अंदाजा लगाया है कम से कम का किताब यानी कुदूरी के अंदर 37 जल्दातिन 3 कोड़ों के साथ। लिअन्नमा दूनहा ला यकाउ बिही जजरू, इसलिए क्योंकि इससे कम कोड़े हो तो उससे तो जजर नहीं होगा, दूसरे को इबरत नहीं होगी, उसके लिए डांट का सबब नहीं बनेगा। वज़करा मशायखुना रहिमहुमुल्लाहु ताला, और हमारे फुकहा फरमाते हैं कि अन्न अदना हुआला मा यराहुल इमामु, कि ताजीर की कम से कम मिकदार वो है जो इमाम की राय हो, यानी कम से कम 3 कोड़े होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये काजी की राय के सुपुर्द है। काजी अगर मुनासिब समझता है तो किसी मसले के अंदर किसी को सिर्फ गुस्से से देखना भी काफी है, काजी अगर मुनासिब समझता है तो किसी को सिर्फ डांटना भी काफी है, काजी अगर मुनासिब समझता है तो किसी का सिर्फ कान मरोड़ना भी काफी है, और काजी अगर मुनासिब समझता है तो अगर किसी को कत्ल करना चाहे तो कत्ल भी कर सकता है। तो ये काजी की राय का सुपुर्द है भाई। तो कहते हैं वज़करा मशायखुना रहिमहुमुल्लाहु अन्न अदनाहु अला मा यराहुल इमामु, और हमारे फुकहाए किराम ने जिक्र किया है कि कम से कम मिकदार ताजीर की वो है जो इमाम की राय हो। युकद्दिरु बिकद्री मा यालमु अन्नहु यंजजिरु, के इमाम मुकरर कर सकता है उतनी मिकदार जितने उसको मालूम हो कि इससे ये बाज आ जाएगा, इतनी मिकदार जिससे दूसरा बाज आ जाएगा वो मुकरर कर सकता है। तो युकद्दिरु बिकद्री मा यालमु, तो इमाम जो है मुकरर कर सकता है इतनी मिकदार जिससे उसको मालूम हो कि अन्नहु यंजजिरु, कि ये शख्स उससे बाज आ जाएगा। लिअन्नहु यख्तलिफु बिख्तिलाफ इन्नास, इसलिए क्योंकि ये मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ लोगों के एतबार से, ये बाज आना रुक जाना ये मुख्तलिफ लोगों के एतबार से मुख्तलिफ होता है, बाज के लिए थोड़ी सी सजा ही काफी होती है और बाज के लिए ज्यादा सजा चाहिए उनको रोकने के लिए। वान अबी यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला से रिवायत है कि अन्नहु अला कद्र इज़मिल जुर्मी व सिगरी ही, वो फरमाते हैं कि ताजीर जो है जुर्म के छोटे और बड़े होने के एतबार से होगी, जुर्म छोटा है तो ताजीर भी थोड़ी होनी चाहिए, जुर्म बड़ा है तो ताजीर भी ज्यादा होनी चाहिए। और याद रखिए इमाम अबू यूसुफ रहमला ये काजिल कुजात थे जी। ये काजिल कुजात थे यानी चीफ जस्टिस थे भाई, आम तुलबा कहते हैं काजीयुल कुजात भाई, काजीयुल या पर जम्मा पढ़ते हैं, हालांकि काजी ये या पर आपने पढ़ा है जम्मा भी सकील है और कसरा भी सकील है, सिर्फ फतहा पढ़ा जा सकता है, तो यहां पर या इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर जाएगी भाई, काजी की या भी साकिन और आगे लाम भी साकिन है, और दो साकिन जमा हो जाएं, अव्वल साकिन हर्फ मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, और अगर हर्फ मद्दा ना हो तो फिर उसको हरकत देते हैं भाई। साकिन इदा हुर्रिका, हुर्रिका बिल कसर भाई। तो काजिल कुजात, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह काजिल कुजात थे, चीफ जस्टिस थे भाई। वो फरमाते हैं कि ये ताजीर जो है ये जुर्म को देखकर की जाएगी, छोटा जुर्म हो तो थोड़ी ताजीर, बड़ा जुर्म हो तो ज्यादा ताजीर हो। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु अला कदरी इज़मिल जुर्म व सिगरिही, कि ताजीर जो है जुर्म के बड़े और छोटे होने के एतबार से हो। वह अन हो, और उन्हीं से एक रिवायत यह भी है कि अन्नहु युकर्रबु कुल्लु नौइन मिन बाबिही, कि करीब किया जाएगा हर किस्म को उसी के बाब के, हर किस्म को उसी के बाब के करीब किया जाएगा। मसलन जिना की हद जो है सबसे सख्त है, तो अगर एक शख्स ने एक अजनबी औरत को छुआ है या बोसा लिया है तो फिर इसकी सजा भी जो है वो हद जिना के बाब से होगी, और हद जिना ज्यादा है, लिहाजा यहां पर भी ताजीर भी ज्यादा की जाएगी। और अगर एक शख्स ने दूसरे पर इल्जाम लगाया है तो फिर इसको हद कजफ के एतबार से सजा दी जाएगी। हद कजफ के अंदर सजा कम दर्जे की है, 100 कोड़े नहीं है बल्कि 80 कोड़े हैं। लिहाजा किसी ने किसी पर जिना के अलावा कोई और इल्जाम लगाया है, जैसे या फासिक या सारिक वगैरह कहा है, तो इसके अंदर सजा भी जरा कम दर्जे की होगी। तो यह माना है वह अन हो, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु युकर्रबु कुल्लु नौइन मिन बाबिही, कि हर नौ को उसके बाप के करीब किया जाएगा। फयुकर्रबु लम्स वल कुबलतु मिन हद्द ज़िना, लम्स कहते हैं छूना और कुबला कहते हैं बोसा लेना। फयुकर्रबु लम्स वल कुबलतु, तो करीब किया जाएगा छूने को और बोसा लेने को। मिन हद्द ज़िना, हद्द ज़िना के, यानी इसमें जरा ज्यादा ताजीर होगी। वल क़ज़्फ़ु बिगैर ज़िना मिन हद्दिल क़ज़्फ़ी, और ज़िना के अलावा कोई और इल्जाम जो है उसको करीब किया जाएगा हद कजफ के, तो उसमें जरा कोड़े कम होंगे, जैसे हद कजफ में कम कोड़े होते हैं हद जिना के मुकाबले में। आगे देखिए, قال وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في تعزير الحبس فعل, यहां से आपको यह बतला रहे हैं कि ताजीर के अंदर सिर्फ इमाम कोड़े लगाने की ही सजा दे सकता है या कुछ दिन कैद में भी डाल सकता है, तो कहते हैं यह इमाम की राय पर है, वो चाहे तो सिर्फ कोड़ों की सजा दे, वो चाहे तो सिर्फ जेल में डाल दे, और वो चाहे तो दोनों सजाओं को मिला दे। तो कहते हैं قال وإن رأى الإمام, और अगर इमाम की यह राय हुई, أن يضم إلى الضرب في التعزير, कि वो ताजीर के अंदर जर्ब के साथ मिला दे अलहबसा, हब्स को, अलहबसा ये मंसूब पड़ेंगे, ये मफूल है रआ फेल के लिए। तो अगर इमाम की यह राय हुई कि वो ताजीर के अंदर जर्ब के साथ मिला दे अलहबसा कैद करने को भी, फाला तो कर सकता है भाई, لأنه صلح تعزيرا, इसलिए क्योंकि यह सलाहियत रखता है ताजीर होने की, यह कैद में डालना यह ताजीर होने की सलाहियत रखता है, यानी काजी सिर्फ कैद में भी डाल सकता है, यह भी ताजीर ही है। तो कहते हैं لِأَنَّهُ صَلُحَ تَعْزِيرًا, इसलिए क्योंकि कैद करना यह ताजीर होने की सलाहियत रखता है। وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ, और शरीयत भी इसके साथ वारिद हुई है, फिल जुमलती मजमूई एतबार से, मजमूए एतबार से कैद करने के साथ शरीयत भी वारिद हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी एक आदमी को कैद में डाला था भाई, अगरचे वो एक आध दिन के लिए कैद किया था, लेकिन बहरहाल कैद करना शरीयत में साबित है भाई। तो कहते हैं वक़द वरद शरउ बिही फिल जुमलती, और तहकीक शरीयत भी इस कैद करने के साथ वारिद हुई है मजमूए एतबार से। हत्ता जाज़ अन युक्तफा बिही फजाज़ अन युज़म्मा इलैही, यहां तक कि इस पर इक्तफा करना भी जायज है, सिर्फ कैद पर इक्तफा काजी कर ले यह भी जायज है, तो यह भी जायज है कि इसके साथ कैद को मिला दिया जाए। तो कहते हैं हत्ता जाज़ अन युक्तफा बिही, यहां तक के जायज है कि सिर्फ इस कैद पर इक्तफा कर लिया जाए। फजाज़ अन युज़म्म इलैही, तो यह भी जायज है कि ज़र्ब के साथ कैद को मिला दिया जाए। वलिहादा लम युशरअ फी ताज़ीर बित्तुहमत क़ब्ल सुबूतिही कमा शुरिअ फिल हद्द लिअन्नहु मिन अत्ताज़ीर, कहते इसीलिए इसीलिए ताज़ीर का मसला काजी के पास आया, एक शख्स ने किसी पर कोई इल्जाम लगाया है, तो अब काजी के पास गवाह भी उसने पेश कर दिए, लेकिन काजी सजा देने से पहले गवाहों की तादील करवाना चाहता है, तो क्या इस दौरान इस शख्स को जेल में डाला जाएगा? कहते हैं नहीं भाई, जेल में डालना तो खुद ताजीर ही है भाई, लिहाजा जब तक जुर्म साबित नहीं होता उस वक्त तक जेल में काजी नहीं डाल सकता। हां, हद के मसले में काजी जेल में डाल सकता है, क्योंकि जेल में डालना वो हद नहीं है, हद तो आगे आएगी अभी जब साबित हो जाएगी। तो हद के मसले में अगर काजी गवाहों की तादील करवा रहा है तो इस शख्स को जेल में डाल सकता है कि कहीं ये भाग ना जाए, क्योंकि वहां हद अलग है। तो जेल में डाल दिया तो ये तो मामूली सी सजा है, असल सजा तो हद है जो आगे आने वाली है। जबकि और किसी मसले में जहां पर हद नहीं आती तो काजी अगर जेल में डाल देगा, भाई जेल में डालना तो खुद ताजीर है और जुर्म अभी साबित नहीं हुआ और आपने उसको सजा भी दे दी, तो लिहाजा पहले जेल में नहीं डाल सकता जब गैर हद का मसला हो। भाई तो कहते हैं वलिहादा लम युशराफी ताजीर बितोहमती कबल सबूती ही, और इसीलिए यह कैद करना मशरू नहीं है ताजीर के अंदर बितोहमती इल्जाम की वजह से, कबल सबूती ही उसके साबित होने से पहले, वो इल्जाम साबित होने से पहले सिर्फ इल्जाम की वजह से ताजीर के अंदर कैद में डालना मशरू नहीं है। तो कहते हैं वलिहाद आलम युशरा फी ताजीरी, और इसी वजह से कैद में डालना मशरू नहीं है ताजीर के अंदर बितोहमती तोहमत की वजह से, इल्जाम की वजह से, कबल सबूती ही उस ताजीर के साबित होने से पहले। भाई कमा शुरिया फिल हदी, जैसे कि हद के अंदर मशरू है, हद के अंदर जेल में डाला जा सकता है हद के साबित होने से पहले। लिअन्नहु मिन ताजीरी, याद रखो ये इल्लत है, वलिहाजा लम युशरा फी ताजीरी, ताजीर के सबूत से पहले कैद में डालना मशरू नहीं। क्यों नहीं? कहते हैं लिअन्नहु मिन ताजीरी, क्योंकि कैद में डालना यह भी तो ताजीर में से ही है, यह तो गोया आपने ताजीर साबित होने से पहले उसको सजा दे दी। भाई आगे देखिए, कालब अशद्दु ज़र्ब ताजीरु, और सबसे सख्त ज़र्ब जो है वह ताजीर में होगी। अब बतलाने लगे हैं भाई ताजीर के अंदर भी जर्ब लगाई जाती है, हद्दे जिना में भी कोड़े लगाए जाते हैं, हद्दे शुर्ब के अंदर भी कोड़े लगाए जाते हैं और हद्दे कज़फ में भी कोड़े लगाए जाते हैं। तो सबसे सख्त जर्ब किस में लगाई जाएगी और सबसे हल्की जर्ब किस में लगाई जाएगी, तो साहिब हिदायत उस तफसील बयान करेंगे और बताएंगे सबसे सख्त जर्ब ताजीर के अंदर लगाई जाएगी। भाई क्यों ताजीर के अंदर क्यों? कहते हैं वजह यह कि ताजीर में कोड़ों की तादाद कम होगी, जब तादाद कम है तो सिफत हम बढ़ा देंगे ताकि उसको इबरत हो। भाई अगर तादाद के कम होने के साथ साथ हम कोड़े भी नरमी से लगाएं फिर तो वो उस जुर्म से बाज ही नहीं आएगा। भाई काल कहते हैं वह अशद्दु ज़र्ब ताज़ीरु, और सबसे सख्त ज़र्ब जो है वो ताज़ीर की है। लिअन्नहु जरत तख़फ़ीफ़ु फ़ीही मिन हैसुल अददी, इसलिए क्योंकि ताज़ीर के अंदर तख़फ़ीफ़ जारी हो चुकी है अदद के एतबार से कि कोड़ों की तादाद कम है। फला युख़फ़फ़ु मिन हैसुल वस्फ़ी, तो लिहाजा इसके अंदर वसफ़ के एतबार से तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, यहां अदद के एतबार से तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी। भाई यहां याद रखना, याद रखना इबारत देखिए, लिअन्नहु जरत तख़फ़ीफ़ु फ़ीही मिन हैसुल अददी, हमारे यहां अमूमन यही राइज है इबारतों के अंदर, हैसु को मुफरत की तरफ मुजाफ कर देते हैं, हालांकि जमहूर का मजहब यह है कि हैसु सिर्फ जुमले की तरफ मुजाफ होता है, या जुमला इस्मिया होना चाहिए या जुमला फ़िअलिया होना चाहिए। जमहूर के नजदीक मिन हैसुल अददी, ये अदद को मजरूर नहीं पढ़ेंगे बल्कि यूं पढ़ेंगे मिन हैसुल अददु, अल अदद को मरफू पढ़ेंगे और हैसु को मुजाफ बनाएंगे जुमले की तरफ, और अल अदद को बना देंगे मुबतदा और आगे उसकी खबर कोई भी मौके के मुताबिक महजूफ निकाल लेंगे जी। कोई भी मसलन अल अददु साबितुन, अल अददु साबितुन, अल अदद मुब्तदा और साबितुन उसकी खबर। भाई तो लिहाजा ये हैसु मुजाफ हो गया जुमले की तरफ, तो जमहूर के नजदीक हैसु सिर्फ जुमले की तरफ मुजाफ होता है, मुफरद की तरफ मुजाफ होता ही नहीं। अगर कहीं इबारत में मुफरद आ भी जाए उसको भी मुबतदा बनाएंगे, आगे उसके लिए खबर अलग निकाल लेंगे, या फेल भी निकाल सकते हैं, फेल महजूफ निकाल लें और इस मरफू को उसके लिए फाइल बना दें। तो बहरहाल हैसु जुमले की तरफ मुजाफ होता है, और यह इमाम किसाई का मजहब है, वो फरमाते हैं कि हैसु मुफरत की तरफ भी मुजाफ हो सकता है। भाई हैसु मुफरत की तरफ मुजाफ हो सकता है, अलबत्ता अलबत्ता मुफरत की तरफ भी अगर मुजाफ किया जाए तो इब्ने हिशाम नहवी लिखते हैं, कि जो मुफरत की तरफ हैसु की इजाफत को जायज करार देते हैं उनके नजदीक जब हैसु मुफरत की तरह मुजाफ होगा तो फिर हैसु मबनी अला जम नहीं होगा बल्कि वह मुअरब होगा, हैसु पर भी एराब आएगा। जब आप हैसु को मुफरत की तरह मुजाफ करें तो फिर हैसु पर भी एराब आएगा। हालांकि हम तो मिन हैसु, हैसु पर हमेशा हम जम्मा पढ़ते हैं क्योंकि जुमले की तरह मुजाफ होता है और जुमले की तरफ इजाफत भी ला इजाफत की तरह है तो लिहाजा मबनी अला जम पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। तो जमहूर के मुताबिक मालूम हुआ यह इबारत यूं पढ़ेंगे मिन हैसुल अददु, और इमाम किसाई के नजदीक अल अददी मजरूर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इब्ने हिशाम क्या फरमाते हैं कि जो हैसु की इजाफत मुफरत की तरफ जायज करार देते हैं उनके नजदीक भी जब हैसु मुफरत की तरह मुजाफ होगा तो वह मुअरब होगा। तो इस सूरत में यूं पढ़ना पड़ेगा मिन हैसिल अददी, मिन हैसिल अददी, मिन दाखिल हो रहा है हैसु पर तो मजरूर हो जाएगा, इस पर एराब आएगा। भाई बात समझ में आ गई। तो लिहाजा हम भी जमहूर की तरह पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ गई। मिन हैसुल अददु या यूं भी आप पढ़ सकते हैं मिन हैसिल अददी। भाई तो बहरहाल ये राइज है भाई, तमाम हमारे तुलबा उलमा सब इसी तरह पढ़ते हैं मिन हैसुल अददी। भाई तो हम जमहूर की तरह पढ़ लेते हैं भाई। तो कहते हैं वह अशद्दु ज़र्बि ताज़ीरु, और सबसे सख्त ज़र्ब जो है वो ताज़ीर है। लिअन्नहु जरत तख़फ़ीफ़ु फ़ीहि मिन हैसुल अददु, इसलिए क्योंकि इसके अंदर तख़फ़ीफ़ जारी हो गई है आदद की हैसियत से कि आदद की तख़फ़ीफ़ इसमें साबित है। फला युख़फ़फ़ु मिन हैसुल वस्फ़ु, लिहाजा वसफ के एतबार से अब तख़फ़ीफ़ साबित नहीं होगी। कैला युअद्दी इला फवातिल मक़सूदी, ताकि कहीं ये मकसद के फौत होने तक ना पहुंचा दे। अगर तादाद भी कम हो और ज़र्ब भी हल्की हो तो मकसद ही फौत हो जाएगा। तो कहते हैं कैला युअद्दी इला फवातिल मक़सूदी, ताकि कहीं ये मकसद के फौत होने तक न पहुंचा दे। वलिहादा लम युखफ्फ मिन हैसु तफ़रीक़ु अलल अज़ाई, वलिहादा लम युखफ्फ, और इसी वजह से इसमें तख़फ़ीफ़ नहीं होती मिन हैसु तफ़रीक़ु अलल अज़ाई, अज़ा पर तकसीम होने के एतबार से। भाई देखो ज़र्बें कम हैं और ताज़ीर के अंदर ज़र्बें सख्त होती हैं, तो अब भी ज़र्बें मुख्तलिफ आज़ा पर तकसीम करके लगाई जाएंगी, क्योंकि अगर एक ही उज़्व पर लगाई तो यह ना हो कहीं उज़्व ही वो तलफ ना हो जाए, वो जाया ना हो जाए। तो अब यहां पर देखो ज़र्बें कम हैं फिर भी आज़ा पर फैला कर लगाएंगे, फिर भी तख़फ़ीफ ना आई क्योंकि ज़र्ब तो जोरदार है। भाई बात समझ में आ गई। तो यह माना है वलिहादा लम युखफ्फ मिन हैसु तफ़रीक़ु अलल अज़ाई, और इसी वजह से इसमें तख़फ़ीफ नहीं आती अज़ा पर तकसीम के एतबार से। काला सुम हद्दु ज़िना, फिर उसके बाद जो है हद ज़िना है, यानी उसके अंदर सख्त ज़र्बें होंगी दूसरे दर्जे की। लिअन्नहु साबितुम बिल किताबी, इसलिए क्योंकि वह किताबुल्लाह से साबित है। अज़ानियत व ज़ानी फजलिदु कुल वाहिद मिन्हुमा मिअत जल्दा व हद्दु शुर्ब सबत बिकौल सहाबती, और हद शुर्ब जो है वो तो सहाबा के कौल से साबित है, वो इजमाए सहाबा से साबित है। भाई वली अन्नहु आज़मु जिनायतन, और नीज इसलिए क्योंकि जीना जो है ये जुर्म होने के एतबार से बड़ा है। हत्ता शुरिया फीहि रजमु, यहां तक कि इसके अंदर रजम करना मशरू है कि गैर शादीशुदा हो तो उसको संगसार किया जाता है, तो ये बड़ा जुर्म है, तो इसके अंदर सख्त ज़र्बें होंगी। सुम हद्दु शुर्बी, फिर उसके बाद हद शुर्ब है, तीसरे दर्जे की सख्त ज़र्बें किसकी हैं, हद शुर्ब की हैं। लिअन्न सबबहु मुतयक्क़नुन बिही, इसलिए क्योंकि शुर्ब का सबब जो है वो यकीनी है, हद शुर्ब का सबब यकीनी है, शराब का पीना यकीनी है। सुम हद्दुल क़ज़्फ़ी, फिर आखिरी दर्जा जो है हद क़ज़्फ़ का है, इसमें सबसे हल्की ज़र्बें होंगी। लिअन्न सबबहु मुहतमिलुन, इसलिए क्योंकि इस हद क़ज़्फ़ का जो सबब है मुहतमिलुन, वो एहतमाल रखता है, एहतमाल रखता है। लेहतमाल कौन ही सादिकन, बवजह इसके सच्चा होने के एहतमाल के, कि इसके अंदर उस आदमी के सच्चा होने का भी एहतमाल है। हद क़ज़्फ़ का जो सबब है वो यकीनी नहीं, और सबब क्या है कि उस आदमी ने ज़िना का इल्जाम लगाया है, तो हो सकता है वो आदमी सच्चा हो। भाई मकजूफ ने वाकई ज़िना किया हो लेकिन काजिफ के पास कोई गवाह मौजूद ना हो, तो लिहाजा वहां चूंकि हद क़ज़्फ़ का सबब यकीनी नहीं लिहाजा वहां ज़र्बें जरबें जरा हल्की लगाई जाएंगी भाई। वली अन्नहु जरा फीह तगलीज मिन हैसु रद्दु शहादती, और नीज इसलिए क्योंकि इसके अंदर सख्ती जारी हो चुकी है, मिन हैसु रद्दु शहादती, शहादत के रद्द करने की हैसियत से, इसके अंदर एक दफा शहादत को रद्द करने की हैसियत से तगलीज जारी हो चुकी है भाई। भाई देखो हद कजफ के अंदर 80 कोड़े भी लगते हैं और वो शख्स मरदूद शहादत भी बन जाता है, तो देखो यहां कोड़े बेशक कम हैं लेकिन मरदूद शहादत होने की वजह से अब ये हद भी क्या हो गई, सख्त हो गई, लिहाजा अब जर्ब को सख्त नहीं किया जाएगा। तो ये माना है, तो कहते हैं वली अन्नहु जरा फीही तगलीज मिन है सूरत दु शहादती, और नीज इसलिए क्योंकि हद कजफ के अंदर एक दफा सख्ती जारी हो चुकी है शहादत को रद्द करने के हैसियत से, फला युगल लजु मिन है सुल वसफ, लिहाजा इसमें सख्ती नहीं की जाएगी वसफ के एतबार से। आगे देखिए, वमन हद्दहुल इमाम औ अज़्ज़रहु फमात फदमहु हद्रुन, सूरत मसला ये, एक इमाम ने किसी को हद लगाई या इमाम ने किसी को ताजीर लगाई और वो आदमी हलाक हो गया, तो क्या इमाम पर जमान आएगा और वो बैतुल माल से अदा किया जाएगा? कहते नहीं, इमाम पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि इमाम को तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि कोई जुर्म करे तो उसको सजा दो। तो कहते हैं वमन हद्दहुल इमाम, और वो शख्स जिसको इमाम ने हद लगाई, औ अज़्ज़रहु जिसे इमाम ने ताजीर लगाई, फमात तो वह आदमी मर गया, फदमहु हद्रुन तो उसका खून रायगा है, हद्रुन का माना रायगा है यानी जाया है, जाया होने का मतलब यह है कि उस खून की वजह से न किसास आएगा और ना दियत आएगी भाई, ये माना है खून जाया चला गया। तो कहते हैं फदमहु हद्रुन तो उसका खून जाया है, लिअन्नहु फअलमा फअला बिअम्रि शरई, इसलिए क्योंकि इमाम ने यह फेल किया है बिअम्रि शरई शरीयत के हुक्म से, व फिअलुल मामूर ला यतकय्यदु बिशर्ति सलामती, और मामूर का फेल वो मुकय्यद नहीं होता सलामती की शर्त के साथ, शरीयत ने हुक्म दिया है कि कोड़े लगाओ तो आप इमाम मामूर हुआ, शरीयत की तरफ से उसको हुक्म दिया गया है एक काम के करने का, तो जब वो मामूर है तो मामूर का काम सलामती के साथ मुकय्यद नहीं, तवज्जो है, मामूर का फेल सलामती के साथ मुकय्यद नहीं। चुनांचे इसीलिए आपको बताएंगे कि एक आदमी जो है फसाद के पास चला गया, फसाद कहते थे पुराना तरीका था, ये जिस्म के बास हिस्सों पर रग काटकर खून निकालते थे, तो ये जिस्म के बाज हिस्सों पर रग काटकर फासिद खून बदन से निकाला जाता था। जैसे आज से कुछ साल पहले भी कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो बादशाही मस्जिद है वहां पर कोई फसाद है मुसलमान भाई, और वो उसके पास हजारों लोग दूर दूर से आते हैं और वो ये पांव पर टखने के करीब कोई रग काटता है और जिस्म से फासिद खून निकालता है और इससे लोगों को बहुत फायदा होता है, तो इसको कहते थे फसाद भाई, ये जो रग काटकर खून निकालता था बदन से भाई। इसी तरह हैवानात में इसी तरह रग काटकर खून निकाला जाता है उसको बज़ाग कहते हैं, इंसानों में वो खून निकालने वाला है तो उसको फसाद, और हैवानात में खून निकालने वाला है तो उसको बज़ाग कहते हैं, ये दोनों लफ्ज आगे आ रहे हैं इबारत में भाई। तो अगर कोई शख्स कोई इसी फसाद के पास चला गया कि मेरी रग काटकर फासिद खून निकाल दो ताकि मेरी बीमारी खत्म हो जाए, फसाद ने रग काटी लेकिन उसकी वजह से उसको कोई ज्यादा नुकसान हो गया, उसका वो उज़्ज़ ज़ाया हो गया या वो हलाक हो गया, तो फिर इस सूरत में फसाद पर कोई जमान नहीं आया क्योंकि उसने खुद फसाद को हुक्म दिया था, तो फसाद तो मामूर था, उसको तो हुक्म दिया गया था इसी आदमी की तरफ से, और मामूर का फेल सलामती के साथ मुकय्यद नहीं होता। या इसी तरह बज़ाग के पास कोई अपना घोड़ा या खच्चर ले गया, यह हैवान बीमार है तो इसका फासिद खून निकाल दो, उसने उसका फासिद खून निकाला और उसकी वजह से वह हैवान हलाक हो गया तो उस पर जमान नहीं आएगा क्योंकि वह तो खुद मामूर था, उसको तो खुद इस हैवान के मालिक ने हुक्म दिया था कि यह इसका फासिद खून निकालो भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु फअलमा फअला बिअम्रि शरई, इसलिए क्योंकि इमाम ने जो फेल किया है वो शरीयत के हुक्म से किया है, व फिअलुल मामूर ला यतकय्यदु बिशर्ति सलामती, और मामूर का फेल जो है वो मुकय्यद नहीं होता सलामती की शर्त के साथ, कल फसाद वल बज़ाग, जैसे कि फसाद और बज़ाग है इनका फेल सलामती के साथ मुकय्यद होना जरूरी नहीं क्योंकि ये मामूर होते हैं, बिखिलाफ ज़ौजी बखिलाफ खावंद के, इज़ा अज़्ज़र ज़ौजतहु जब उसने बीवी को ताज़ीर की भाई। देखो खावन जो है उसको भी शरीयत ने ताजीर की इजाजत दी है। अगर उसकी बीवी नाफरमान है तो वो उसको सजा दे सकता है, लेकिन मकसद जो है बीवी की इस्लाह हो, उस पर जुल्म करना मकसद ना हो। भाई चुनांचे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वज़रिबू हुन्ना, खावंदों को हुक्म फरमा रहे हैं अल्लाह वज़रिबू हुन्ना, अगर इनकी इस्लाह किसी तरह ना हो तो इनकी पिटाई करो। तो देखो मालूम हुआ खावंद को शरीयत ने ताजीर का हक दिया है भाई, लेकिन खावंद को इजाजत दी है शरीयत ने, हुक्म नहीं दिया कि पिटाई करो, बल्कि इजाजत दी है। और एक चीज की इजाजत हो यानी वो मुबाह हो तो वहां वो फेल सलामती के साथ मुकय्यद है। लिहाजा अब खावन बीवी की पिटाई करता है तो ये फेल सलामती के साथ मुकय्यद है, अगर बीवी को कोई नुकसान पहुंचा तो खावन को फिर जमान अदा करना पड़ेगा। या ये इसी तरह है जैसे रास्ते पर चलना, रास्ते पर चलना हर एक के लिए मुबाह है, जैसे बीवी की पिटाई जो थी खावंद के लिए मुबाह थी, जायज थी, इसी तरह रास्ते पर चलना हर आदमी के लिए मुबाह है, हर आदमी रास्ते पर चल सकता है, लेकिन ये उसका चलना सलामती के साथ मुकय्यद होगा। लिहाजा अगर एक आदमी कोई जानवर पर सवार होकर चल रहा है और किसी को रास्ते में नुकसान पहुंच गया तो फिर इसको जमान अदा करना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ इस ज़ौजी इज़ा अज़्ज़रा ज़ौजहू, बेखिलाफ खावंद के जब वो अपनी बीवी को ताज़ीर करे, लिअन्नहु मुतलकुन फीही, इसलिए क्योंकि खावंद इसके अंदर आजाद है, यानी खावंद के लिए बीवी की ताज़ीर मुबाह है, खावंद को इजाजत है। वल इतलाकात यतकय्यद बिशर्त सलामती, और जो इतलाकात होते हैं यानी जो आजादियां होती हैं वो मुकय्यद होती हैं सलामती के शर्त के साथ। कल मुरूर इफी तरीके, जैसे कि रास्ते में से गुजरना, तो रास्ते में से गुजरना हर एक के लिए मुबाह है लेकिन यह सलामती के साथ मुकय्यद होगी। वकाल शाफी रहमुल्ला, और इमाम शाफी रहमुल्ला फरमाते हैं तजिबुद्दियत उफी बैतुल माली, के दियत वाजिब होगी बैतुल माल में। अगर इमाम ने किसी आदमी पर ताजीर जारी करवाई और वह आदमी हलाक हो गया तो बैतुल माल में से दियत अदा की जाएगी, ये इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला तजबुद्दियत फी बैतुल माल, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि दियत वाजिब होगी बैतुल माल में, अगर इमाम ने किसी को ताजीर की और ताजीर के अंदर उस आदमी का इंतकाल हो गया, वो हलाक हो गया, तो फिर इस सूरत में जमान आएगा और बैतुल माल से वो जमान अदा किया जाएगा भाई। तो कहते हैं वकाल शाफई रहमहुल्ला तजबुद्दियत फी बैतुल माली, के दियत वाजिब होगी बैतुल माल में, यानी ताजीर की सूरत में। ताजीर की सूरत में किसी को जानी या बदनी नुकसान पहुंचता है तो बैतुल माल से जमान अदा किया जाएगा। लिअन्नल इतलाफ खतअउन फीही, इसलिए क्योंकि तलफ करना यानी हलाक करना यह गलती है फीही ताजीर के अंदर, ताजीर के अंदर तलफ करना किसी को हलाक करना यह गलती है, तो इसमें फिर जमान देना पड़ेगा। तो कहते हैं लिअन्न अल इतलाफ खतअउन फीही, इसलिए क्योंकि ताजीर के अंदर हलाक करना यह खता है। इज़ ताजीर उल तादीबी, इसलिए क्योंकि ताजीर जो है वो अदब सिखाने के लिए होती है। गैर अन्नहु तजिबुद्दियतु फी बैतिल माली, इलावा इसके कि यह दियत बैतुल माल में वाजिब होगी। लिअन्न नफअ अमलिहि यरजउ इला आम्मतिल मुस्लिमीन, इसलिए क्योंकि इमाम के अमल का जो नफा है वो आम मुसलमानों की तरफ लौटता है। इमाम जो और काजी लोगों के दरमियान फैसला करते हैं उसका फायदा आम लोगों की तरफ लौटता है, लिहाजा आम लोगों के माल में से ही जमान अदा किया जाएगा यानी बैतुल माल में से। तो कहते हैं लिअन्न नफ़अ अमलिहि यरजउ इला आम्मतिल मुस्लिमीना, इसलिए क्योंकि इमाम के अमल का नफा जो है वह आम मुसलमानों की तरफ लौटता है। फयकूनुल गुर्मु फी मालिहिम, गुर्म कहते हैं जमान को, गैन राम मीम, फयकूनुल गुर्मु फी मालिहिम, लिहाजा जमान भी मुसलमानों के माल में से होगा। कुल ना, हम कहते हैं, हम जवाब में कहते हैं लम्मा स्तौफा हक अल्लाह ताला भी अमरी, कि जब इमाम ने अल्लाह का हक वसूल किया भी अमरी अल्लाह के हुक्म से, सारा का अन अल्लाह अमातहु मिन गैरी वासितातिन, तो ये ऐसे ही हो गया गोया अल्लाह ने उस आदमी को मारा है बगैर किसी वास्ते के। फला यजिब उस जमान, तो जमान वाजिब नहीं होगा। हम कहते हैं जो इमाम और काजी सजा दे रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, तो अल्लाह का हुक्म نافذ کرتے ہوئے وہ شخص ہلاک ہوا تو یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے اللہ نے اس کو مارا ہے، لہذا اس میں قاضی اور امام پر کوئی زمان نہیں آئے گا۔ تو یہ معنی ہے، پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، قل نا ہم کہتے ہیں لما استوفى حق اللہ تعالی بامرہ، کہ جب امام نے اللہ کا حق وصول کیا اللہ کے حکم سے، سارا کأن اللہ اماتہ من غیر واسطہ، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اللہ نے اس مجرم کو موت دے دی بغیر واسطے کے، فلا یجب الزمان، تو زمان واجب نہیں ہوگا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔